रात्रि क्लास चल रहा था, तीस तीन 1967, दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी नई दुनिया में जाने के लिए, नई दुनिया बनाने वाले की याद में रहना है। तो हम भी नई आत्मा बन जाएंगे। हम आत्मा नई हो जावे तो नया शरीर नई दुनिया में मिल जाएगा। उस समय सब चले जाएंगे वापस। क्योंकि बाप आकर इस दुखी दुनिया से मुक्ति देते हैं। मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। आत्मा पुरानी दुनिया के बंधन से मुक्ति भी होती है और नई दुनिया में आकर के नया चोला लेकर के नए जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति भी लेती है। ये बिल्कुल इजी समझने की बातें हैं। जैसे बुद्धि में है और उन बातों को मनुष्यों को जो सुनाते हैं तो सुनाने वाले खुशी में होना चाहिए। योग में रहना चाहिए, योग में होना चाहिए। योग माने याद में रहना चाहिए। लगाव में रहना चाहिए। जिसकी याद में रहेंगे तो वो जैसे खुशनुमा होगा तो हम भी खुशनुमा हो जाएंगे। योग में रहते रहते हम खुश नहीं रह सकते हैं तो कोई को हमारा ज्ञान बाण नहीं लगता है। नहीं तो है तो बिल्कुल सहम समझने की बातें हैं, बड़ी सहज बातें हैं। और इस तरह हर्षित मुख रह करके औरों को समझाएंगे तो और भी आएंगे, बहुत आएंगे बच्चे समझने के लिए। और ये दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब आखिरी में आएंगे जरूर। राजाएं भी आएंगे, जिन राजाओं का बहुत मान मर्तबा होता है, और ये साधु संत भी बहुत आवेंगे, जिनका इस दुनिया में बहुत मान मर्तबा है। क्योंकि ये आवाज निकलेगा, कोई बड़ा होगा ना बड़ा होगा है नहीं भले नहीं है लेकिन बताया कोई बड़ा होगा तो उसका आवाज जरूर निकलेगा। बड़ों बड़ों का आवाज निकलता है ना, तो दुनिया में सारे ही षष्ठी चक्र में चौरासी जन्मों के चक्र में इस दुनिया में बड़े से बड़ा कौन है? कौन है? शिव बाप। इस दुनिया में चौरासी जन्मों में, चौरासी जन्मों में इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला बड़े ते बड़ा शिव बाप है। शिव बाप तो असली ज्ञान सूर्य है। सूर्य इस दुनिया से सदैव डिटैच होकर रहता है या इस दुनिया में अटैच होकर रहता है? सदा डिटैच होकर रहता है। सूर्य के ऊपर कोई का अटैचमेंट नहीं होता। और सूर्य किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। अगर कोई आता भी है तो वो एक ही है जो सूर्य के अटैचमेंट में आता है, जो सूर्य सदा ज्ञान प्रकाश का पुंज है। अकूट ज्ञान का भंडार है। उस अकूट ज्ञान के भंडार से जो पूरा अकूट ज्ञान भंडार का वर्षा लेता है, वो कौन है? सागर है या सूर्य का बच्चा? सूर्य है, सूर्य है। हाँ, वो ज्ञान सागर है। भले सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है, ज्ञान सूर्य, तो उसे अपना टाइटल देता है। सूर्य का बच्चा सूर्य। वास्तव में जो सूर्य होगा वो सदाकाल का सूर्य होगा या कभी होगा कभी नहीं होगा? तो जिसको आकर इस संसार में सूर्य का टाइटल देता है और बताता भी है, गीता में भी लिखा है, मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। मना इस सब मनुष्य सृष्टि में इन धरती के सितारों के बीच में कोई सूर्य के मानिंद पार्ट बजाने वाला है? जिसको सूर्य कहा जाता है, ये दुनिया उसे सूर्य मान लेती है, क्योंकि वो सदा ज्ञान में रहता रहता है, ज्ञान प्रकाश देता है, इसलिए वो असली ज्ञान सूर्य जिसमें आता है वो भारत कहा जाता है, नारायण कहा जाता है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट भी बजाता है, परंतु ज्ञान की रोशनी में ही रहने वाला है। जब अज्ञानी बनता है तो दुखी होता है और बोला है, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं, कोई कोई जो 82-83 जन्म में भी सुख में रहते हैं, एक जन्म दुख में रहते हैं, जैसे अंश मात्र, ऐसे तो सारे ही सूर्यवंशी बच्चे इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर तीन हिस्सा सुख भोगते हैं और एक हिस्सा दुख भोगते हैं। बाकी जो और धर्मवंशी हैं वो आधा सुख भोगते हैं और आधा दुख भोगते हैं। तो बताया कि तुम सूर्यवंशी बच्चों को छोड़ करके वंश तो कोई साकार बाप से ही शुरू होता है ना, तो वो साकार सो निराकार गाया हुआ है। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर साकार पार्टधारी तो है, आदि से लेकर अंत तक साकार पार्टधारी, शरीर से पार्टधारी है, परंतु एक टाइम ऐसा भी आता है जबकि वो साकारी होते हुए भी निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। किसके संग के रंग से? जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, सदा निराकार है, उस निराकार की निरंतर याद की प्रैक्टिस से साकार होते हुए भी निराकारी बन जाता है, और तब तक निराकारी बन जाता है जब तक इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी देवात्मा निराकारी स्टेज में रहती है, तब तक निराकारी स्टेज में ही रहता है। मना देवात्माएं ज्यादा से ज्यादा इस रंगमंच पर कितने समय के लिए निराकारी रहती हैं? 2000 वर्ष। परंतु वो तो सब बच्चे हैं, देवात्माएं भी बच्चे हैं इस मनुष्य सृष्टि में। सुधरे हुए हैं या बिगड़े हुए मनुष्य हैं? 2000 वर्ष तक सुधरे हुए मनुष्य देवता कहे जाते हैं। देवता क्यों कहे जाते हैं? देने की इच्छा रखते हैं, लेने की इच्छा नहीं रखते। ऐसा है? ऐसा है? राधा कृष्ण जो सृष्टि के पहले पत्ते माने जाते हैं, वो एक दूसरे से सुख लेने की इच्छा रखते हैं या देने की इच्छा रखते हैं? हैं? लेते नहीं है? हैं? अगर लेते नहीं है, लेते नहीं है तो नीचे कैसे गिरते हैं? लेने की इच्छा रखने वाला नीचे गिरेगा या सदा दाता है वो नीचे गिरेगा? है? हाँ, वो ऐसे की संतान है जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है तो किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता। जैसे शिव सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, अपना कल्याण रखने की इच्छा नहीं रखता, ऐसे ही उस निराकारी बाप का जो पहलौटी का बड़ा बच्चा है उसमें भी ये शक्ति आ जाती है। क्या? कि देता है, लेने की इच्छा नहीं रखता। लेने की इच्छा देहधारी रखते हैं जिनमें कम से कम अंश मात्र देह का अंश जरूर रहता है। तो कितने हैं जिनमें देह का सुख लेने का अंश मात्र इच्छा जरूर रहती है? 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 108 बस है? 108 के अलावा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो देह का सुख लेने की इच्छा नहीं रखती है? रखती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या क्यों बताया ब्रह्म वाक्य में? संगम पर इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज पर कितनी आत्माएं पहुंचती हैं? 4.5 लाख 8 इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब कोई इच्छा नहीं, अंश मात्र भी इच्छा नहीं, कोई साकार से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। बोलो। जो साकार मनुष्य में सभी साकार मनुष्यों का बाप है, बाप असली अर्थों में अगर बाप है और निराकारी बाप है, देह जैसे है ही नहीं, उसका यादगार क्या है? शिवलिंग। कैसा लिंग? शिवलिंग। क्या मतलब हुआ? शिव का लिंग। शिव का लिंग होता है, शरीर होता है? शरीर ही नहीं होता वो कौन? जिसका शरीर ही नहीं होता और कभी भी नहीं होता, इसे साकार मनुष्य सृष्टि पर आता भी है तो भी उसका अपना शरीर नहीं होता। जो गर्भ से जन्म लेने वाला हो, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, स्थूल शरीर भी नहीं होता, इसलिए उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और जो भी आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनकी आत्मा का नाम होता है या शरीर का नाम होता है? उन सब का शरीर का नाम होता है। तो जो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई है, उसको भी अपना शरीर होता होगा या नहीं होता होगा? होता है। फिर तो जिसको देह है वो देहधारी इच्छा नहीं करेगा, देह की सुख की इच्छा नहीं करेगा, करेगा? देहधारी है तो। देहधारी का मतलब है देह को धारण करने वाली आत्मा है तो इच्छा जरूर करेगा। शिव देह है ही नहीं, रथ है, है? रथ ही नहीं तो स्वार्थ भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं और कभी भी नहीं। स्वार्थी कौन बनेगा? है? जिसको अपना रथ होगा वो स्वार्थी बनेगा। तो आत्माओं का बाप है, उसको रथ नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है, लेकिन मनुष्य सृष्टि तो रचने का निमित्त तो है आत्मा। मनुष्य सृष्टि रची ही तब जा सकती है जब मनुष्यों में मन बुद्धि होती है। मन बुद्धि किस लिए होती है? मन होता है मनन चिंतन मंथन करने के लिए, और जो मनन चिंतन मंथन किया है राइट या रंग, उसको फैसला किया जाए कि जो मनन चिंतन मंथन किया है या जो भी संकल्प विकल्प चला है उसमें राइटियस क्या है, उसकी समझ है, उस समझ शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। फैसला करने की पावर, परखने की पावर। तो परख शक्ति या बुद्धि मनुष्य आत्माओं में एक जैसी है या सबकी अलग अलग है? और मनन चिंतन मंथन करने की भी शक्ति सबकी अलग अलग। तो कहा जाता है तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, क्या तुंडे माने मुंड, जितने भी मुंड हैं उन सब में अपने अपने प्रकार की अकल है, एक की अकल नहीं मिल सकती दूसरे से। तो ऐसी कोई तुंड है, वक्र तुंड महाकाय, ऐसा कोई है जिसमें सभी के तुंड समा जाएं, अर्थात जैसे मनुष्यों में खून होता है, कई प्रकार का खून होता है ना, उसके ग्रुप बनाए जाते हैं, ये व्यक्ति इस ग्रुप का है, इस खून का ये ग्रुप है, उसका वो, उसका वो। तो कोई ग्रुप ऐसा है जिस ग्रुप का खून कोई को भी लगा दिया जाए तो एडजस्ट हो जाए, होता है या नहीं? कौन सा ग्रुप होता है? हाँ, ओ का मतलब अंग्रेजी में है बिंदु, क्या जीरो। तो असल में जीरो कौन है? जो सदा जीरो है वो शिव। लेकिन शिव कहता है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो सारी दुनिया के प्राणी मात्र विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं। कब आता हूं हैं? जब सारे ही प्राणी मात्र विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं, तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। अरे माने मनुष्य मात्र जो भी आत्माएं हैं चैतन्य है, या प्राणी मात्र चैतन्य है ना, तो सब विकारों की दलदल में डूब मरे। तो जिस चोटी को पकड़ करके उठाता हूं वो चोटी नहीं डूबती है, अरे ऊपर होगी तभी तो उठाएगा ना। तो चोटी को पकड़ करके उठाता हूं इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ब्राह्मणों में चोटी समान ऊंचाई है, जैसे कहते हैं पहाड़ की चोटी, जैसे पहाड़ों में बड़ा पहाड़ हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ में भी कोई सबसे ऊंची चोटी है या नहीं है? उसका नाम क्या है? एवरेस्ट। क्या? एवरेस्ट। भारत के ऐसा ईस्ट का कोना जहां से पूर्वीय दशा दिशा शुरू होती है, है? दिशा पूरब, लेकिन पूरब की दिशा कहीं से शुरू होती है और कहीं अंत होती है। जहां अंत होती है वहां दक्षिणी दिशा शुरू हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो उसको कहते हैं ईशान कोण, जहां से पूर्व दिशा शुरू होती है, उत्तर दिशा की समाप्ति होती है, तो पूर्व दिशा का वो आरंभ कौन सा कोण? ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण का मतलब है ईश्वर, मन ज्ञान सूर्य जहां से प्रत्यक्ष होता है। क्या सूर्य कौन सी दिशा से प्रत्यक्ष होता है? पूरब से निकलता है। पूरब में भी आदि पूरब में या अंत पूरब में? आदि पूरब से निकलता है, जहां से पूर्वीय दिशा आरंभ होती है। तो इसका मतलब है कि जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला त्रिकालदर्शी है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर का मतलब यह है कि मैं प्रैक्टिकल में नहीं कहा जा सकता कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग बात होती है। थ्योरी में कोई फेल हो जाए, हाँ फेल, लेकिन प्रैक्टिकल में पास हो जाए तो संसार के काम का है या नहीं है? डॉक्टर है, थ्योरी में पढ़ाई में फेल हो जाए, लेकिन वो डॉक्टर प्रैक्टिकल जहां परीक्षा आती है तो वहां कभी फेल ना हो, पास ही पास होता रहे। तो जो थ्योरी में फेल होता है वो दो चार मरीजों को मार भी देगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जो सदा पास होने वाला है, फर्स्ट क्लास है, उसके हाथ से कोई मरीज मरेगा नहीं। तो शिव बाप कहते हैं, आत्माओं का बाप, मैं त्रिकालदर्शी हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नंबर वार तुम बच्चे बनते हो। तो जो नंबर वन बच्चा है, बाप का बड़ा बच्चा, वो क्या बनता है? अव्वल नंबर में प्रैक्टिकल त्रिकालदर्शी बनता है। कारण? क्यों बनता है और क्यों नहीं बन सकते?
बाप के कहने से एकदम परफेक्टली हो ही सकता है,
ये कोई बात नहीं। बाप कह दे और वो बन जाए, इसका मतलब बाप ने वरदान दे दिया तो सबको वरदान दे दे।
बाकी सारे नहीं चलते
हैं,
बाकी सारा 100% नहीं चलता है बाप के कहने से।
बाप
के कहने से
वो क्यों चलता है? वो ही क्यों चलता है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो और बीज नहीं होते मनुष्य वो वृक्ष में, और बीज नहीं होते हैं क्या? अरे वो अकेला बीज है क्या? बीज तो अनेक है ना। तो बात है कि बीज अनेक हैं मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के, परंतु वो पहला बीज है। इस बात की गहराई को जो भी इस दुनिया में बागवान होते हैं या किसान होते हैं वो जानते हैं कि बाग में कोई भी फल का जो वृक्ष है उसका पहला फल में निकला हुआ बीज बोने के लिए बहुत अच्छा होता है, सबसे श्रेष्ठ फल देगा। ऐसे ही किसान जानता है कि कोई भी फसल का पहला पौधा जिसमें पहला बीज निकले, चाहे तुरई हो चाहे लौकी हो, कोई भी फल या कोई भी सब्जी हो, पहले फल में आया हुआ जो पहला बीज होगा वो नई सृष्टि के लिए अव्वल नंबर गिना जाता। तो ये तो उदाहरण हुआ जो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य वृक्ष है उसमें भी जब वृक्ष परिपक्व स्टेज को पहुंचता है और उसमें जो पहला फल निकलता है उसका जो पहला बीज होता है वो बीज नई मनुष्य सृष्टि रूपी फसल के लिए अव्वल नंबर है। जिस बीज से अल्लाह ने, मुसलमानों में प्रसिद्ध है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। वो मानते हैं कि हम तो दो नंबर के धर्म के हैं, क्या इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरे नंबर का धर्म है या अव्वल नंबर है? दूसरे नंबर का है। वो जानते हैं हमसे भी पहले, माने इब्राहिम के आने से भी पहले इस सृष्टि पर मनुष्य थे या नहीं थे? थे, जानते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि में ये बात पहले से ही बैठी हुई है कि अव्वल नंबर का धर्म कोई और है, और उस अव्वल नंबर धर्म का जो अव्वल नंबर आदि मनुष्य है, आरंभ का पहला पहला आदमी है, वो आदम है। और सभी धर्म पिताएं आदम को मानते हैं, कोई भी धर्म पिता अपन को आदम नहीं कहता। तो जो आदि बीज है उसकी खासियत क्या है जो और बीजों में नहीं है? वो मनुष्य है, वो मुकर्ररत क्यों है, हमको क्यों नहीं बना देता, इनको क्यों नहीं बना देता? कैसे पता चली ये फर्स्ट बीज है? इसलिए कि शिव बाप की बड़े ते बड़ी क्वालिटी है त्रिकालदर्शी। क्या? त्रिकालदर्शी, तीनों काल का ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता। तो प्रश्न पैदा होता है किसके तीनों काल का ज्ञाता, क्या है?
बड़े बच्चे की
हाँ, इससे मनुष्य सृष्टि का का जो भी चक्र है उस चक्र में कोई है जिसके तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब वो तीनों कालों को क्रॉस करता है मनुष्य सृष्टि का वो बीज जो अव्वल नंबर बीज है जब तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है तो उसकी बुद्धि में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान आता है। तीनों काल का ज्ञान कब आता है? हैं? किस आधार पर आता है? किसके तीनों कालों का ज्ञान उसकी बुद्धि में आता है? हैं? हाँ, कोई है ना जिसके तीनों काल का ज्ञान उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब तक वो तीनों काल क्रॉस न करे वो अव्वल नंबर का बीज मनुष्य सृष्टि का तीनों काल क्रॉस न करे तब तक उसकी बुद्धि में त्रिकाल दर्शिता का ज्ञान नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा? नहीं कहा जाए। तो तीनों काल का ज्ञान जब उसकी बुद्धि में आ गया तो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर वो पहचानता तो है ना कि कौन सी मनुष्य आत्मा है जो तीनों काल का चक्कर क्रॉस करके त्रिकालदर्शी पहले बनेगी। हा? जान सकता है कि नहीं? जानता है। एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो उस एक पर ही फिदा होता है। भारत पर फिदा होता है। भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। संगम युग में भी, शूटिंग पीरियड में भी, रिहर्सल का काल है ना, यहां भी उस बीज रूप आत्मा की ये विशेषता है कि जब से बाप का बच्चा बनता है, जब से बाप का बच्चा बनना माने जन्म लिया, जन्म लिया माने निश्चय बुद्धि हुआ, अनिश्चय बुद्धि माने मर गया, बाप का बच्चा नहीं रहा। तो जब से निश्चय बुद्धि हुआ तब से लेकर उसका धंधा ही एक है, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। इसलिए ये हिस्ट्री में देख लो, जो भी राजाएं हुए हैं उन्होंने सदैव अपने बड़े बच्चे को ही राजा ही दिए। क्यों? हाँ, क्योंकि ये परंपरा ऊंचे से ऊंचा भगवंत शिव बाप की डाली हुई परंपरा है कि अपने बड़े बच्चे को ही आकर के नहीं, राजा ही नहीं है उसके पास। उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी जिस बच्चे को वो चुनता है उसके पास नहीं। क्या है उसके पास? उसके पास भी नहीं है, और जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसी के पास, किसी के पास नहीं। और मनुष्य आत्माएं तो, मनुष्य आत्माएं तो क्या प्राणी मात्र विकारों की दंदल में पूरे डूब ही जाते हैं। लेकिन वो चोटी बचती है, और चोटी में खून होता है, है? गांठ की बात नहीं, खून होता है, खून नहीं होता। खून भी दो तरह का, एक जो स्थूल खून होता है, एक आत्मा का खून होता है। स्थूल खून स्थूल शरीर का, और आत्मा का खून है उसे देह का खून नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे संकल्पों का खून। वो भी दो प्रकार का होता है या नहीं? कैसे? अच्छे संकल्प और बुरे संकल्प। तो जो चोटी पकड़ करके खींचता है, वो चोटी में ना अच्छे संकल्प ना बुरे संकल्प, संकल्प जैसे है ही नहीं। तो जड़ कहे या चैतन्य कहे? जड़। जड़ जर्जरी भूत मना चैतन्यता है या मुर्दा है?
चैतन्यता है लेकिन पुराना है, बहुत पुराना।
प्राणियों जैसी चैतन्यता है, जो अन्य प्राणी है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ऐसी चैतन्यता है, है? बालों में, चोटी में, चोटी की तो बात हो रही है, चोटी में बालों को जो चोटी कहते हैं, उनमें जैसे खून चलता रहता है ना, अच्छा हो या बुरा हो तो चलेगा, तो चैतन्यता है, है? पत्थर बुद्धि है या चंचल है? पत्थर है। बालों में नहीं कोई चैतन्यता, खून नहीं दौड़ता है, तो जो पत्थर जैसा बन गया अंतिम जन्म में, और मनुष्य मात्र इतने पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं जितना मनुष्य सृष्टि का बीज पत्थर बुद्धि बन जाता। पत्थर बुद्धि माने अज्ञानी या ज्ञानी? है अज्ञानी। तो पत्थर बुद्धि में आता हूं या परसेंटेज में पारस बुद्धि में आता हूं? है पत्थर बुद्धि। पतितम कामी कांटे में आता हूं, कैसा पत्थर बुद्धि? ऐसा पत्थर बुद्धि कि ब्रह्म वाक्य मुरली में बार बार आता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, और ये बात उसकी बुद्धि में बैठती है, है? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने और ब्रह्मा बाबा के जो भी सपोर्टर्स ब्राह्मण आत्माएं थे, सबने अपोजिशन किया कि तुम जिसे धोबी घाट कहते हो, ये धंधा अच्छा नहीं है। क्या ये बेकारों में जाने वाली बात है? तो उसने माना है? ब्रह्मवाक्य की मुरली में ही दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से बुलवाई दिया, तो उन बच्चों को कितना समझाते थे, जो बच्चे इतने तीक्ष्ण पुरुषार्थी थे कि मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर हो बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गए, परंतु जब हमने देखा ये तो विकार में जाते हैं। तो हम उन्हें समझाने लगे, उन्होंने नहीं माना। तो ब्रह्मा बाबा ने तो उन बातों उस बात का विस्फोट बाहर की दुनिया में नहीं किया, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा के भगत थे उन्होंने उस बात का विस्फोट सिंध हैदराबाद में, जो बड़े बड़े लोग थे जिनके बड़े बड़े घराने की अच्छे अच्छी कन्याएं आई हुई थी सत्संग में, वो बिगड़ गए। और जब वो बिगड़ गए, माहौल खराब हो गया, तो ब्रह्मा बाबा चुपचाप भाग गए। सबसे पहले भाग गए। तो बताओ, जिस परिवार का मुखिया और उसका राइट हैंड ही भाग जाए तो परिवार का क्या हाल होगा? परिवार की जो मां है वो ही भाग गई तो बच्चे क्या करेंगे? है बच्चे भी भाग जाएंगे। तो जब ये हालत हो गई और विरोधियों ने इतना विरोध किया कि मुरली में ब्रह्म वाक्य में ही बता दिया, लाश भी गुम कर दी। क्या समय? सारी दुनिया एक तरफ, बाहर की दुनिया तो विरोधी थी लेकिन ब्राह्मणों का जो संगठन था वो भी एक तरफ हो गया और एक आत्मा एक तरफ रह गई। तो बताया, लाश गुम कर दी। क्यों? जब ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का मुकर्रर रथ है तो उस रथ को, रथ का ध्वंस कैसे कोई ने कर दिया? है
है था।
हाँ जी, यदि के आदि में उतना ज्ञान नहीं था। जो ब्रह्मा बाबा को ये बात समझा सके, क्या अंदर से पक्कापन था कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन ज्ञान की इतनी गहराई नहीं थी जो इस बात को समझा सके। और ये बात ब्रह्मा वाक्य मुरली में भी बोली है। क्या बोला है याद आया? बोला है, कहते हैं शंकर का विष पीते पीते गला काला हो गया। अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। किसने बोला? अरे मुरली में वाक्य बोला है तो ये किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? शिव तो बोल ही नहीं सकता। क्यों?
है
नहीं नहीं, अब सारा ज्ञान कैसे बोल दिया? हाँ, आधार लेके सारा ज्ञान कैसे बोल दिया? गले का तो खास आधार है। तो बोलते हैं ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है, तो साबित हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा ने बीच में ये बात बोल दी। क्या कि कहते हैं शंकर का विष पीते पीते गला ही काला हो गया। अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। किसका गला सूखा जाता है, कौन कहता है? अरे शिव बाबा कहते हैं उनका गला सूखा जाता है, वो समझा ही नहीं सकते। जो ज्ञान का अखूट भंडार है वो इस बात की गहराई को नहीं समझा सकता कि शंकर जो देवताओं के बीच में महादेव कहा जाता है, बड़े से बड़ा देवता, तीन देवताओं में भी सबसे ऊंचे तबके में दिखाया जाता शंकरपुरी, उसके बारे में वो नहीं जानता है? कि विष पीते पीते गला कैसे सूख गया इतनी ऊंची हस्ती का, वो शिव नहीं समझा सकता। अरे शिव जो त्रिकालदर्शी है वो नहीं समझा सकता, वो तो समझा सकता, तो किसने बोला? हाँ ब्रह्मा बाबा ने ये बात बोली कि अभी ये बात समझाते समझाते हमारा तो गला सूख जाता है, हम किसी को समझा नहीं सकते। तो देखो गहरी बात है ना, है इसमें गुह्य राज है या नहीं है? गीता में ही लिखा है गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्, गुह्यते गुह्य राज समझाता हूं। ये राज की बातें बच्चा बुद्धि समझेंगे है? बच्चा बुद्धियों की समझ में थोड़े ही आएगा, जो सालिम बुद्धि होंगे उनकी ही समझ में आएगा। क्या और जो धर्मों की आत्माएं हैं, जो धर्म बाद में आने वाले धर्म पिताएं हैं, वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स इस गुह्य बात को न समझ सकते हैं न दुनिया वालों को समझा सकते हैं। वो समझा ही नहीं सकते, अरे उनकी तो बात ही छोड़ो, जो भी भारतवासी विधर्मियों में विदेशियों में द्वापर से कन्वर्ट होते रहे, चाहे वो उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माएं हो और चाहे वो आधार मूर्त जड़ स्वरूप, जिन जड़ों का आधार लेकर वृक्ष खड़ा रहता है, वो जड़ स्वरूप आधार मूर्त आत्माएं हो, ब्राह्मणों की दुनिया में ही है दोनों प्रकार की आत्माएं, तो वो दोनों प्रकार की मनुष्य आत्माएं उनमें अब्बल नंबर का कोई धर्म का ग्रुप है या नहीं? सूर्यवंश है, लेकिन सूर्यवंशियों में भी सब राज को समझने वाले हैं। अरे सूर्यवंशी हैं और राज को समझने वाले नहीं हैं? नंबर वन समझते हैं,
108 समझते हैं, बाकी 16,000।
अरे एक बात बताओ ना, जो समझते हैं वो दूसरों को समझाए भी सकते हैं, जो समझते नहीं वो दूसरों को समझाए भी नहीं सकते। तो जो भी सूर्यवंशी है वो सब समझते हैं इस बात को।
एक पूरा समझता, बाकी नंबर वार समझता। अरे 100 समझता है।
दूसरा कहेगा अरे 8 समझते हैं। तीसरा कहेगा अरे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं समझते हैं। ऐसे समझने वाले जो खुद भी समझे और फिर दूसरों को समझा सके तो कहेंगे समझदार। अगर खुद समझ लेते हैं और दूसरों को समझा ही नहीं सकते तो उनको क्या कहेंगे? हैं, गूंगे कहेंगे या बोलते कहेंगे? वो तो गूंगे हो गए, गूंगे का गुड़ हो गया। गूंगा गुड़ खा ले और कोई पूछे ये गुड़ जो बात बता रहे हो, हम तो विदेशी आत्माएं हैं, हम तो चीनी खाने वाले हैं, हम तो जानते ही नहीं गुड़ का। अरे गुड़ कैसा होता है? अब गूंगा क्या बताए कैसा होता है? तो वो अव्वल नंबर जो ग्रुप है, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की कितनी आत्माएं हैं जो इस राज को दुनिया वालों को समझाएंगी और दुनिया वाले भी उस राज को समझेंगे और राजदार बनेंगे। परसेंटेज में राजयोगी बनेंगे क्योंकि अपने अपने परिवार के राजा सभी होते हैं या नहीं होते हैं? अपने परिवार के बीच में जो परिवार का मुखिया है वो राजा होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो तो अंश मात्र समझने की बात हुई, बाकी ऐसे कितने हैं जो खुद भी पूरा समझें और दूसरों को भी समझाएं? तब ही कहेंगे राजधानी के मालिक। ऐसे तो सारे विश्व की राजधानी का मालिक एक ही होगा, नारायण। लेकिन नारायण अकेला राज्य करेगा सारी दुनिया में? सहयोगी राज्य के अधिकारी होंगे या नहीं होंगे? हैं? जो विश्व पिता कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे गाया हुआ है ना, तो वो खुद तो बैगर दिखाया जाता है। बैगर है या साहूकार दिखाया जाता है? बैगर के रूप में है वो, खुद तो राजा ही नहीं करता लेकिन बच्चों को देता है विश्व की बादशाही या नहीं देता है? देता है। तो जो बच्चे विश्व की बादशाही लेते हैं, राजधानी पर काबिज होकर रहते हैं, वो बच्चे खुद समझने वाले होंगे तभी तो सारे विश्व को समझा सकेंगे, है कि नहीं? तो वो 108 की माला है। माला माने संगठन। क्या 108 मनुष्य आत्माओं का ऐसा सशक्त संगठन है दुनिया का जिनके आत्मा रूपी मन के एक बाप के स्नेह और ज्ञान में पिरोए हुए? कौन से धागे में पिरोए हुए? हाँ, कोई भी माला होती है ना, उसमें धागा होता है, वो धागा सभी मणकों से होता हुआ जो अव्वल नंबर है उसमें जाकर के गांठ लगती है। तो वो धागा डबल होता है कम से कम, या सिंगल होता है, डबल होता है, एक ज्ञान का धागा और दूसरा स्नेह का धागा। तो उस बाप के स्नेह के धागे में पिरोए हुए 108 ऐसे वस्त्र हैं जो बाप के गले का हार बनते हैं। वो हार नहीं, वो माला रूपी संगठन नहीं, जो सभी धर्मों में माला दिखाई जाती है, जो सभी धर्म वाले माला सिमरण करते हैं, स्मरण करते हैं मणकों को, वो एक बाप के गले का हार बनते हैं क्या? हैं? बनते हैं। एक ऊंचते ऊंच बाप के गले का हार नहीं बनते। हर धर्म की अपनी अपनी माला होती है और मणके भी कम ज्यादा होते हैं। ये 108 की माला है। 108 ऐसे ब्रह्मा वत्स निकलते हैं जो इस राज को अच्छी तरह से समझते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। बाकी जो सेकंड क्लास माला है, नंबर 2 की माला, वो है 16108। क्या उस माला के लिए बताया कि 16000 की माला रूपी संगठन में जाने से तो अच्छा है साहूकार बन जाओ, और जन्म जन्मांतर के साहूकार बन सकते हो, क्योंकि 16000 जो सरेंडर्ड होते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, अपना तन मन धन समाज के सामने अर्पण कर देते हैं, उनमें बहुत से तो ऐसे हैं जो आज समर्पण होते हैं और कल भाग जाते हैं। तो उनके लिए बताया कि जो समर्पित होकर के बाहर की दुनिया में भाग जाते हैं, वो बाहर की दुनिया में जाकर के चांडाल बनेंगे। क्या दे करके वापस ले ले तो क्या बनता है? चांडाल बनता है। लेकिन 2 प्रकार के चांडाल बताए, सरेंडर हो जाएं और समर्पित होकर के भाग जाएं, और बाहर की दुनिया में भाग जाए। क्या कोई भाग जाए सरेंडर हो, और सरेंडर हो करके भाग करके अपने मां बाप जो ज्ञान में चल रहे हैं उनके पास भाग जाए, तो मां बाप को दुनिया भी कहेंगे या ब्राह्मण ही कहेंगे? दुनिया भी है, ज्ञान में चल रहे हैं तो दुनिया भी हुए, या ब्राह्मणों के संगठन में कहे जाएंगे? ब्राह्मणों का संगठन है, भले प्रजा वर्ग में आने वाले हैं, सरेंडर्ड नहीं है। तो वो तो हुए भाग जाने वाले बाहर की दुनिया के प्रजा वर्ग के क्या बनने वाले? चांडाल। और जो अंदर रह करके धम चक्कर मचाते हैं, क्या दुनिया देखती है समझती है सरेंडर हो गए, मां बाप ने समझा, परिवार वालों ने समझा, और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी समझा कि ये समर्पण हो गए, लेकिन अंदर जाकर के कोई बात मानते ही नहीं, हर बात का अपोजिशन करते हैं, खूब धम चक्कर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उनके लिए बताया कि वो ईश्वरीय परिवार कहा जाता है। 16108 राजा बनने वाले नंबर वार, भले एक जन्म के लिए राज परिवार में रहते हुए कंट्रोलिंग पावर मिल जाए, तो वो भी राजा हुए या नहीं हुए है। जैसे राष्ट्रपति का अंगरक्षक है या मुख्य ड्राइवर है, तो इंडिया की पब्लिक में किसी को पता चले कि ये इस हौदे पर है, तो उसका दबदबा होगा या नहीं होगा है, उसकी राजाई कुछ न कुछ चलेगी या नहीं चलेगी। तो ऐसे ही वो 16000 हैं जिनका 84 जन्मों में कहीं न कहीं कोई न कोई जन्म में जाकर ऐसा पब्लिक के ऊपर दबदबा हो जाता है। जैसे दुर्योधन दुशासन राजा थे नहीं, राजा थे, राजकुमार थे, राज परिवार के भांति थे, फिर दबदबा था या नहीं था। और अपने बाप के ऊपर भी दबदबा था या नहीं था, है? था। कंस का जो बाप था वो राजा था, उग्रसेन, और कंस राजा तो नहीं था। फिर कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में थी या नहीं थी, तो जो परिवार के भांति होते हैं उनके हाथ में भी दबदबा होता है या नहीं होता है, कुछ न कुछ कंट्रोलिंग पावर होती है ना। तो ऐसे ही 16108 हैं राजयोग सीख करके राजाई का दबदबा पाने वाले, राजा बनने वाले। वास्तव में सब राजा हैं नहीं उसकी नजर में, उसकी नजर में जो गले का हार बनने वाले राजा बच्चे हैं वो कितने हैं? 108। लेकिन वो अपनी धिंगा मुस्ती से राजा बनकर के बैठ जाते हैं, और वो अभी भी ब्राह्मण परिवार में हैं, शूटिंग कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, ब्राह्मण परिवार उन्हें देख सकता है, समझ सकता है कि ये ईश्वरीय नियमों पर पूरा पूरा श्रीमत पर चलने वाले नहीं है, गड़बड़ कर रहे हैं। फिर भी उनके दबदबे में रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो रिहर्सल यहां होती है, वहां ब्रॉड ड्रामा में अपना अपना अपने तरीके का रिहर्सल के समय जो रिहर्सल की है वैसा ही पार्ट बजाते हैं। तो बताओ कितने बच्चे हैं जो इस राज को, जो राज बच्चे नहीं जानते हैं, क्या जो 16000 गोप गोपी जानते हैं, क्या नाम रखा? गोप और गोपी। गोप गोपी का मतलब है गुप्त, किस बात में गुप्त, कोई संबंध ऐसा है मानवीय संसार में जो संबंध गुप्त होता है और गुप्त ही संबंध जोड़ा जाता है। क्या संबंध इंद्रियों के साथ जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के जोड़े जाते हैं? इंद्रियों के साथ संबंध जोड़े जाते हैं। जो ब्रह्म वाक्य है संबंध सुख देने के लिए होता है और बंधन दुखदायी होता है। तो ब्रह्म वाक्य कहता है सुख लेना है और सुख देना है। तो सुख देने और सुख लेने का संबंध तो अनेक प्रकार के हैं। माँ बाप बच्चों का सुख लेते हैं या नहीं लेते हैं? हैं? लेते हैं। बच्चे माँ बाप का सुख लेते हैं या नहीं लेते हैं? और संबंधों के मुकाबले माँ बाप और बच्चों के बीच में जो संबंध होता है अंतर होता है या नहीं? इंद्रियों से जो सुख लिया जाता है और दिया जाता है उसमें अंतर होता है ना? तो ऐसा संबंध कौन सा है? संबंध अनेक प्रकार के हैं। संबंध माने सुखदाई संबंध, दुखदाई नहीं होने चाहिए। तो ऐसा संबंध कौन सा है कि सुखदाई तो है और इतना सुखदाई है, इतनी बड़ी छाप छोड़ने वाला है कि पुरुष मरता है तो सारा जीवन जिन इंद्रियों का सुख भोगा है वो इंद्रियांत समय में वो संबंध याद आ जाता है और अंत मते सोगते हो जाती। तो कौन सा जन्म मिलता? स्त्री का जन्म मिलता। इसी तरह इंद्रिय का प्रभाव सुख लेने का सुख देने का स्त्री जाति के ऊपर भी पड़ता है। स्त्री अपने जीवन में जब शरीर छोड़ती है अंत समय में तो सारा जीवन जो सुख भोगा है वो सुख अंत समय में याद आता है और जिसके साथ सुख भोगा है वो याद आ जाता है। तो अंत मते कौन सा जन्म मिलता है? तो देखो ये स्मृति संबंध की इतनी गहरी है संग का रंग लग जाता है और ऐसा संग का रंग बुद्धि में छप जाता है कि अगले जन्मों तक भी पीछा करता है, छोड़ देता है। फिर रहस्य बताया जैसा संग वैसा रंग। विविचारी संग होगा तो रंग भी विविचार का लगेगा। देवताओं की दुनिया अविविचारी संग की होती है, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। ये अविविचारी संग है जो सदा काल का सुख देने वाला है और इसके उलट विविचारी संग वो विविचार जितना जास्ती बढ़ता जाएगा उतना भयंकर दुखदाई होता जाएगा। 10 इंद्रियां हैं और 11वां है मन। इंद्रियां ज्यादा दुखदायी हो सकती हैं या मन ज्यादा दुखदायी हो सकता है? है होता तो है, लेकिन ज्यादा सुखदायी और दुखदायी कौन कहा जाएगा? जो जितना पावरफुल होगा उतना ज्यादा दुख भी दे सकता है, उतना ज्यादा सुख भी दे सकता है। तो मन ज्यादा पावरफुल है इसलिए दुखदायी भी हो सकता है, और जब मन बिगड़ता है तामसी बनता है तो मेंटल टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? और ये मेंटल टेंशन अभी 100-200 वर्ष की बात भारतवासियों की छोड़ दो, क्योंकि 100-200 वर्षों के अंदर भारतवासियों में दासता के जो संस्कार विदेशियों के पड़ गए उन संस्कारों ने परिवर्तन ला दिया। क्या ऐसे दास दातस्तु के संस्कार पड़ गए कि भारतवासी विदेशियों से ही प्रभावित होने लगे? तो विदेशियों की जो परंपरा देखी बस उसके पीछे दीवाने होने लगे, और सबसे पहले भारत में दीवाने बने हैं भारत के राजाएं, जिन्होंने पहले पहले भारत से विदेशों के चक्कर लगाना शुरू किए, और वो राजाएं विदेशियों की परंपरा से प्रभावित होकर के अनेक संबंध में आने लगे, जिसे गुप्त संबंध कहा जाता है। आने लगे या नहीं? विदेशियों में छूट है, जीवन में जितने चाहो उतने संबंध जोड़ो, 1, 2, 4, 8 बार डाइवोर्स दो और 8 बार संबंध जोड़ो, 10, 20, 50 बार जोड़ो। और भारतवासियों ने, तो भारतवासी राजाओं ने क्या किया है? हद ही तोड़ दी, सीमा उल्लंघन कर दी, बहुत व्यभिचारी बने। राजाओं के पास शक्ति होती थी इसलिए खुलेआम भी अनेक शादियां करते रहे, व्यभिचारी बनते रहे। प्रजा बेचारी क्या करे? प्रजा के पास तो इतनी ताकत, इतनी धन दौलत, इतनी महल माड़ियां नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे यथा राजा तथा प्रजा बनेगी या नहीं बनेगी, तो क्या करेंगे? है चोरी चकारी करेंगे। तो आज भारत की बात छोड़ दो, 200-250 साल पहले भारतवासी खास करके जो प्रजावर्ग की आत्माएं थी, क्योंकि राजाएं तो थोड़े थे जिन्होंने विदेशियों का पीछा करना शुरू कर दिया, प्रजा तो बहुत थी। तो भारतवासियों ने अपनी परंपरा देवताओं की ज्यादा अपनाई है लंबे समय तक, और अब व्यभिचारी होकर के रहे। उनमें भी खासकर कन्याएं माताएं, भारत की कन्याएं माताएं, जिन्हें शास्त्रों में भगवान की गौएं करार दिया गया। क्या? भगवान की गौएं। क्यों? गौ बड़े सीधे स्वभाव की होती है। भारत की कन्याएं माताएं ये ह्यूमन गौएं हैं, जो माँ बाप उन्हें एक खूंटे से बांध देते हैं और सारा जीवन सीधा साधा जीवन एक ही खूंटे से बिताती है, पति शरीर भी छोड़ दे तो भी सारा जीवन उसी पति की याद में बिताए देती है, दूसरी शादी नहीं करती, ऐसा व्यभिचारी जीवन था। इसलिए भारत का जो विशेष धर्म है सूर्यवंश, वो सूर्यवंशी ज्यादा सुखी रहते हैं या दूसरे धर्मों के लोग ज्यादा सुखी रहते हैं? सूर्यवंशी ज्यादा सुखी रहते हैं। सनातन धर्म अव्वल नंबर धर्म, सत्य सनातन धर्म। कैसा धर्म? सत्य, और सनातन माने पुराने थे, पुराना सत्य। अकेला होता है या अनेक साथी होते हैं? है सत्य अकेला होता है, तो ये अकेला धर्म है संसार में जो सदा सत्य है, सदा कल्याणकारी है और सदैव सुंदर पाठ बजाने वाले हैं। किस आधार पर? अब व्यभिचारी होने के कारण। कौन सा संबंध? जो ज्यादा से ज्यादा व्यभिचारी और ज्यादा से ज्यादा आप व्यभिचारी हो सकता है, कौन सा संबंध? पति पत्नी का। तो साजन सजनी के संबंध में जो संसार में सबसे जास्ती या व्यभिचारी बनता है कौन है? अरे किसका यादगार है शास्त्रों में? राधा कृष्ण का यादगार है।
राधा कृष्ण उनका
पक्का प्रेम रहा जीवन भर, अंश मात्र भी झूठा नहीं। ऐसे पक्के प्रेमी कि औरों के साथ जो संबंध रहा वो पटरानियां कही गई और राधा महारानी का टाइटल मिलता है और प्रैक्टिकल में महान पार्ट बजाती भी है, क्योंकि राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबी। परंतु यही आत्माएं सर्वोपरि हैं क्या? अभी विचारी स्टेज में है
उनको जन्म देने वाला?
क्यों? हाँ, जो राधा कृष्ण ने गुप्त संबंध जोड़ा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जोड़ा, एक के साथ ही संबंध जोड़ा, वो संबंध देह की इंद्रियों का संबंध है। देह विनाशी तो संबंध भी विनाशी। और देह से ऊपर स्टेज है मन बुद्धि की, तो मन बुद्धि के द्वारा जो सुख भोगा जाता है वो देह का संबंध नहीं है, देह से परे की स्टेज है, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों से क्यों पूछे? उनका नाम ही है काम के आधार पर गोप गोपी। क्या काम किया है? गुप्त संबंध जोड़ा, गुप्त संग किया। कितनों के साथ गुप्त संबंध किया? 16108 के साथ गुप्त संबंध किया। ये छी छी हुआ, अच्छा हुआ है। एक के साथ संबंध जोड़ा। गोप गोपियों ने किसके साथ संबंध जोड़ा? सुख लेने के लिए एक के साथ संबंध जोड़ा। तो जो एक के साथ संबंध जोड़ा है, गुप्त संबंध जोड़ा है, जो बड़ा प्रभावशाली है। क्यों? कि उस गुप्त संबंध में जितनी याद आती है उतना और किसी संबंध में याद नहीं आती है। माना साजन सजनी का जो संबंध है तो इंद्रियों का ही संबंध, लेकिन उसमें बड़ी ताकत है। कितनी ताकत है? कि अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, इंद्रियों के सुख का नाम निशान नहीं। किसके साथ? जो इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत की स्टेज में चला जाता है। जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो कितने बनते हैं? है कितने बनते हैं अतीन्द्रिय सुख लेने वाले? 16108। कोई चित्र दिखाया जाता है चरित्र की यादगार है, रासलीला। जो भी गोपियां रासलीला में दिखाई जाती हैं चित्रों में, हर गोपी के साथ एक गोपी बल्लभ, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो भारत के राजाओं में हिस्ट्री में प्रसिद्ध रहा, उन राजघरानों में एक लिंग भगवान की पूजा होती रही। किसकी पूजा? एक लिंग भगवान, दूसरा पति परमेश्वर नहीं। लेकिन वो तो भक्ति मार्ग के थे कि ज्ञान मार्ग के थे? भक्ति मार्ग के थे। पूजा करते थे लेकिन उस रहस्य को नहीं जानते कि भगवान ने भी सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ा है। प्रैक्टिकल का गायन होता है या सिर्फ बोल बोल का गायन होता है? प्रैक्टिकल का गायन होता है। और सर्व संबंध जोड़े हैं। क्या भगवान ने सर्व संबंध जोड़े हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्हारे साथ मेरे सब प्रकार के संबंध है। तो वो सर्व संबंध निराकार आत्माओं के, निराकार मनुष्य मात्र के, जो 16108 की लिस्ट में आते हैं, निराकार ज्योति बिंदु के साथ हैं या साकार के साथ हैं? हैं? क्या है? निराकार के साथ नहीं। ब्रह्मा कुमारियों से पूछना क्या कहेंगी? है निराकार के साथ। अरे उन्हें पता ही नहीं है कि संबंध का अर्थ क्या होता है। सम माने समान, बंध माने बंधन। संबंध कब जुटेगा? जब समान हो दोनों, एक चींटी हो और एक हाथी हो और दोनों की शादी कर दो, संबंध जुटेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। दोनों समान होने चाहिए, एक सिर्फ निराकार और दूसरा साकार, संबंध जुटने का सवाल ही नहीं। तो वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, मुकर्रर माने सदाकाल या अल्पकाल? सदाकाल। तो सदाकाल जिसके संग रहेगा तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। वो साकार जो निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है, जिस साकार में मुकर रूप से प्रवेश करती है, तो वो भी आखरीन क्या बन जाती है? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती है। तो जो निराकार सो साकार है, ऐसे नहीं कि निराकार ही है साकार शरीर नहीं है, है तो, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का उसे भान नहीं रहता, ऐसी बुद्धि की स्टेज बनाए रखी है। याद के पुरुषार्थ के आधार पर जो शास्त्रों में गायन है, कवियों ने गीत गाया है, कवियों की भावना जब कविता करती है तो ऊंची भावना के स्तर पर होती है या नीची भावना होती है? है ऊंची भावना होती है, और जब ऊंची भावना होती है तो भगवान भावना का भाड़ा देता है या नहीं देता है? भगवान भावना का भाड़ा देता है। तो जो गीत गाते हैं उसमें रहस्य भरा हुआ होता है। तुलसीदास ने एक चौपाई बोली, यही जानहु, क्या तुलसीदास ने अपने इष्ट देव को बोला, यही जानहु, तुम जिसे जानते हो, जिसको तुम जानते हो, उसके तीनों कालों को तुम जानते हो, क्या यही जानो जिसको तुम अच्छी तरह से जानते हो? कैसे अच्छी तरह से? तीनों कालों को जानते हो। यही जानो ते ही देव जनाई, जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो। कितनी ऊंची बात, किसने किससे कही ये बात, किसने कही और किससे कही है? अरे तुलसीदास की आत्मा ने, हाँ, अपने इष्ट देव को कही, जिसे तुलसीदास भगवान मानते थे, वो तो राम को मानते थे, लेकिन हम बच्चों को तो बता दिया ब्रह्म वाक्य में मुरली में ऊंचे से ऊंचे भगवंत ने बता दिया क्या क्या बता दिया कि तुलसीदास की आत्मा कौन सी आत्मा है कैसे बता दिया कि तुलसीदास की आत्मा राम वाली आत्मा है हाँ। ब्रह्म वाक्य बोल दिया कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी है चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो चाहे वो तुलसीकृत रामायण हो वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और तुलसीदास ने कलयुग में तुलसीकृत रामायण लिखी तो जिसने लिखी है वो लिखने वाली आत्मा कौन क्यों क्योंकि रामायण में राम की कथा लिखी है भले तुलसीदास ने लिखी है तो भी राम की कथा लिखी है द्वापर युग में और कलयुग में तुलसीदास ने लिखी है रामायण हिंदी में तो वो भी राम की कथा लिखी है तो लिखने वाली आत्मा कौन है हैं? राम की आत्मा है लेकिन बाप ने हमें बता दिया कि राम वो त्रेता वाला राम नहीं 14 कला वाला राम नहीं वो भगवान नहीं है फिर कौन सा राम वो ही राम वाली आत्मा नीचे गिरते 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 जिसने रावण को खत्म कर दिया रावण माने रुलाने वाले को खत्म कर दिया क्या इस दुनिया में से उस रावण जो सारी दुनिया को रुलाता था उसको खत्म कर दिया वो राम नहीं जो त्रेता का राम समझ लिया 14 कला संपूर्ण अरे त्रेता वाला 14 कला संपूर्ण ऊंचा होगा या सतयुग वाला देवता ऊंचा होगा है सतयुग वाला जरूर ऊंचा सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है सतयुग में नारायण का राज्य था तो उससे तो ऊंचा नारायण हो गया तो त्रेता वाले राम की बात नहीं है किस राम की बात है वही राम वाली आत्मा जब कलयुग के अंत में शिव बाप का रथ बनती है किसका रथ ऊंचे ते ऊंचे भगवंत आत्माओं का बाप बनती है बनती क्या है ही वो ऊंचे ते ऊंचा आत्मा जो सब का बाप है उसका कोई बाप है ही नहीं वो उस त्रेता वाले राम के अंतिम जन्म में कलयुग में आकर मुकरर रूप से प्रवेश कर जाता है क्या जब प्रवेश किया नई सृष्टि रचने के लिए तो उस कार्य में आदि है या अंत है आदि है और नियम है जो आदि स्वंत आदि में निराकार ने साकार में मुकर्र रूप से प्रवेश कर लिया तो दोनों कंबाइंड हो गए कि नहीं? एक निराकार ज्योति बिंदु और एक साकार बड़ा रूप जो बोला है। तुम बच्चे निराकार ज्योति बिंदु को नहीं याद कर सकते हो तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो, जिस बड़े रूप में मैं परमानेंट प्रवेश करता हूं, मुकर्रर रूप से प्रवेश किया हुआ हूं संगम में। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए तो जब पूरी राजधानी स्थापन होती है तो राजधानी का जो राजा है उसकी कोई धारणा शक्ति होगी या नहीं होगी? है? धारणा शक्ति के बगैर कोई राजा की राजाई नहीं चल सकती, क्योंकि दुनिया के सारे कार्य पवित्रता की शक्ति से होते हैं और वो पवित्रता कन्याओं माताओं में होती है या पुरुषों में होती है जिनको ब्रह्म वाक्य में टाइटल दे दिया पुरुष सब साहब दुर्योधन दुशासन। वो एकांत पाई करके अपनी दुष्टता के बगैर रह नहीं सकते हैं। पुरुष मात्र दुर्योधन दुशासन बताई दिए, वो चाहे ऊंचे ते ऊंचे त्रिदेव ही क्यों न हो, ब्रह्मा ही क्यों न हो, विष्णु देवता ही क्यों न हो, शंकर देवता ही क्यों न हो, क्या शंकर जो महादेव कहा जाता है देवताओं में बड़ा देवता, वो दुर्योधन दुशासन कोई मानेगा? है? दुनिया का कोई शास्त्रकार मानेगा? आप उन्हें मनवा सकते हैं। कैसे? जो शंकर है उसके जो चित्र बनाए हैं शास्त्रकारों ने शास्त्रों में, वो चित्र किस बात की याद दिलाए रहे हैं? हैं? क्या चरित्र? याद में बैठे हुए चित्र दिखाए जाते हैं। शंकर के ज्यादातर चित्र किस स्टेज में दिखाए जाते हैं? याद की स्टेज में बैठे हुए दिखाए जाते हैं। इसे साबित होता है कि वो याद का पुरुषार्थी है या नहीं है? हैं? पुरुषार्थी है। अपने से ऊंचे को याद करता है या कोई अपने से नीचे को याद करता है? तो किसको याद करता है? शास्त्रों को जानकार कहेंगे, जिसको तुम शिव नाम लेते हो वो शिव शंकर तो एक ही है, उनको अलग अलग कैसे कर दिया? तो बता सकते हो जो भी यादगार मंदिर हैं पुराने थे पुराने, कहीं भी एक भी मंदिर दिखाए दो जिसमें शिवलिंग बीच में रखा होता है और शंकर की मूर्ति देवताओं की मूर्तियां जो दीवालों में चारों ओर होती हैं वहां मुख्य स्थान पर होती है, तो शिवालय जहाँ शिवलिंग बीच में रखा हुआ है वो शिवलिंग मुखिया है या देवताएं और देवताओं का मुखिया महादेव मुखिया है? है शिवलिंग मुखिया है। कभी भी नहीं कहा जाएगा कि शंकर लिंग कहते हैं, है नहीं कहते। अरे शंकर तो क्या 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी लिंग नहीं, शिवलिंग नहीं कहा जा सकता। ये बात हमें शिव बाप ने बताई। क्या कि जो मुखिया होता है, बाप होता है, उसका नाम पहले रखा जाता है और बच्चे का नाम बाद में रखा जाता है। तो जो तुम कहते हो शिव शंकर भोलेनाथ एक ही है, तो शंकर शिव क्यों नहीं कहते? इससे साबित होता है कि शिव अलग है मुख्य और उसको फॉलो करने वाला शंकर अलग है। और शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। क्या उसका कोई कार्य नहीं है ऐसा इस संसार में, चाहे मुख से कार्य किया हो, चाहे दृष्टि से कार्य किया हो, चाहे कानों से या कोई भी इंद्रिय से कार्य किया हो, इस सृष्टि में वो शिव भगवान आकर के पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? बजाता है, पार्ट इंद्रियों से ही बजाया जाता है ना। तो उसकी इंद्रियों से बजाया हुआ कोई ऐसा पार्ट यादगार नहीं हो सकता जो दुखदाई हो। वो सदा सुखदाई है। क्या सुख देने वाला बाप है, कभी भी विनाश करने वाला नहीं हो सकता। और शंकर, शंकर का तो नाम ही बताता है कि नाम में ही व्यभिचार घुसा हुआ है। क्या एक है या तीन है? तीन है। एक तीसरे नेत्र के रूप में शिव नेत्र कहा जाता है, दूसरा अर्धचंद्र के रूप में चंद्रमा कहा जाता है, और तीसरा जिसका शरीर है वो आत्मा स्वयं। तो संकरण हो गया ना तीन आत्माओं का। तो देखो नाम में ही व्यभिचार घुसा हुआ है या नहीं? तो जब नाम में ही व्यभिचार घुसा हुआ है और शास्त्रों में जितने भी नाम है काम के आधार पर है, तो वो व्यभिचारी साबित होता है या नहीं साबित होता है? शंकर हुआ ना, और शिव, शिव तो सदा कल्याणकारी। वो तो इस पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है, मुकर्रर रूप से संग संग लेता है, टेम्परेरी संग नहीं। वो तो हमको भी बताता है, तुम बच्चे कभी ऐसे मत समझो कि ये देहधारी बोलता है, ये निराकारी बोलता है। क्या समझो, क्या समझो? हमको तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत डायरेक्शन देता है। यहां तक कि गारंटी लेता है अगर इस शरीरधारी से कुछ उल्टा बोल उल्टा कर्म हो भी जाता है तो मैं उसको सुधारने की गारंटी लेता हूं। तो देखो वो तो सदा शिव है, शिव माने ही कल्याणकारी, अकल्याण का नाम निशान नहीं है उस आत्मा में। कोई काम नहीं करता कल्याण का। क्या जिन इंद्रियों से भी कार्य करेगा मुकर्रर रथ के द्वारा वो कार्य कल्याणकारी ही होगा या अकल्याणकारी होगा? कल्याणकारी ही होगा। तो देखो दो आत्माएं अलग अलग हैं, कार्य करने वाली एक सदा कल्याणकारी, और जिसमें प्रवेश करता है मुकर्र रूप से वो सदा कल्याणकारी नहीं है, कभी कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी। और ये तो नियम है इस दुनिया का, इस दुनिया की हर चीज, इस दुनिया का हर प्राणी, इस दुनिया का हर देहधारी, इस दुनिया की दुकान हो मकान हो कुछ भी हो, पांच तत्व हो, पहले पहले नई दुनिया में सब सातों प्रधान पार्ट बजाते हैं, बीच में रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। दुनिया की कोई एक चीज का नाम ले लो जो सतो प्रधान सतो सामान्य रजोगुण तीन गुणों से पसार न होती हो, कोई है? है कोई भी चीज नहीं। तो शंकर वाली आत्मा भी मनुष्य आत्मा के मनुष्य रूप में है, वो भी अच्छे थे अच्छा पार्टी भी बजा सकती और बुरे थे बुरा पार्टी भी बजा सकती। अच्छे ते अच्छा पार्ट बजाती है तो उस पार्ट को कहा जाता है कैसा पार्ट? सुंदर ते सुंदर पार्ट। हमें ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया ऐसा सुंदर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा सुंदर पार्टधारी और ऐसा काले से काला भयंकर पार्ट बजाने वाला दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो नाम रख दिया है भक्तों ने श्याम सुंदर। पहले कैसा पार्ट बजाता? श्याम काले से काला पार्ट बजाता और बाद में सुंदर पार्ट बजाता, इसलिए श्याम शब्द पहले और सुंदर शब्द बाद में। लेकिन भक्त जो हैं उनमें ज्ञान तो है नहीं, भक्तों की आत्मा हिस्ट्री को तो जानती है, मनुष्य शक्ति 5000 वर्ष की हिस्ट्री को तो पक्का निकाल लेती है प्रूफ के आधार पर। कितने वर्ष की हिस्ट्री निकालती है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री पक्का पक्का निकालती, क्योंकि 2500 वर्ष पहले दुनिया का बड़ा विनाश हुआ था। जितना बड़ा विनाश सतयुग में नहीं त्रेता में नहीं, द्वापर के आदि में जितना बड़ा विनाश हुआ वो द्वापर के अंत में भी नहीं और कलयुग के मध्य में भी कभी नहीं होता। जब नई सृष्टि रचनी होती है ऊंचे थे ऊंचे करतार को, तब नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ने के बाद पुरानी दुनिया का टोटल विनाश होता है। तो अर्ध विनाश जब होता है और टोटल विनाश जब होता है तो अंतर होगा या नहीं होगा? है, ये दुनिया के एक्सीडेंट हैं। जैसे कोई मनुष्य का बड़ा एक्सीडेंट होता है तो इस जन्म की पहले की सारी याददाश्त खत्म हो जाती है। ये तो एक जन्म की बात हुई, एक जन्म की मृत्यु की बात हुई, और कलयुग के अंत में जो विनाश होता है वो तो महामृत्यु है, महाविनाश। छोटी मोटी मृत्यु, छोटा छोटा विनाश तो 2500 साल से होता ही आया, लेकिन ये जो अभी विनाश होने वाला है नई सृष्टि का पक्का फाउंडेशन पड़ने के बाद, इतना विनाश तो कभी 5000 वर्ष में भी नहीं हुआ। हाँ, 5000 वर्ष पहले यही विनाश हुआ था। तो इतना बड़ा विनाश, इतनी बड़ी महामृत्यु कि दुनिया का कोई भी प्राणी, चाहे देव आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, राक्षसी आत्मा हो, पशु हो, पक्षी हो, पतंगा हो, कोई भी बचेगा नहीं। कोई बचेगा? है, आत्माएं बचेगी सब, सभी आत्माएं बचेंगी। तो विनाश तो आत्मा का थोड़ा ही होता है, विनाश और मृत्यु किसकी होती है? शरीर का विनाश होता है। तो सारे संसार का बड़े ते बड़ा विनाश, इतना बड़ा एक्सीडेंट, तो उस एक्सीडेंट के बाद जब नई सृष्टि प्रत्यक्ष होती है, जो सृष्टि पहले गुप्त होती है या शुरुआत से ही प्रत्यक्ष होती है, जैसे दुनिया में कोई भी परिवार होता है तो परिवार में जो भी पैदाइश होती है पहले गर्भ के अंदर गुप्त होती है या प्रत्यक्ष होती है? पहले गुप्त होती है। गुप्त में भी पहले 5 तत्वों का, जड़ तत्वों का पुतला तैयार होता है। जब पुतला परिपक्व स्टेज में गर्भ में हाथ पांव नाक आंख कान 10 इंद्रियां तैयार हो जाती हैं, तब लास्ट में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ऐसे ही है ये महाविनाश, महामृत्यु के बाद जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र ही नहीं प्राणी मात्र की आत्माएं, अपने पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं। किसी को भी कुछ नहीं याद रहता। हां, जब नई सृष्टि में, नई दुनिया में, सतयुग में पहले पहले जन्म लेकर आती हैं तो वो चित्रकारी करते हैं, देवताएं वो चित्रकारी रह जाती है। इसलिए जो शास्त्र बनने से भी पहले जो पर्वतों की गुफाओं में भीत चित्र मिले हैं वो सबसे पुराने हैं। उन चित्रों के आधार पर बाद में शास्त्र बने, तो वो चित्र कहां की यादगार है? महाविनाश से पहले की यादगार है, महामृत्यु से पहले की यादगार है या बाद के जीवन जीने वालों की यादगार है? अरे जो चित्र मिले हैं 2500 साल पहले पहाड़ों की गुफाओं में जो शास्त्र बनने से भी पहले तैयार हुए थे, जब लिपि थी ही नहीं, क्या ये जो भाषा बनी है लिपिबद्ध है वो आदि में थी क्या? थी ही नहीं। हाँ, चित्र देवताएं भी बनाते थे, वो चित्र बनाने की परंपरा अर्धविनाश हुआ तो आधा भूलेंगे और आधों को तो याद रहेगा। अर्धविनाश का मतलब सब विनाश हो गए या कोई कोई बचे, तो जो जो बचे वो अपने पूर्व जन्मों की कुछ बातें याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो जिन्होंने याद रखा उन्होंने चित्र बनाए, और कुछ जो चित्र बनाए हैं वो अनुमान के आधार पर बनाए हैं। कुछ चित्र स्मृति के आधार पर बनाए हैं और उनके आधार पर शास्त्र तैयार हुए, तो वो शास्त्र 100% सच्चे होंगे, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र। जो द्वापर युग से मनुष्य कहे जाते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले के मनुष्य कहा जाता है। देवताएं मनन चिंतन मंथन करते थे है? नहीं। तो जब से मनन चिंतन मंथन करके चित्रकारी हुई, शास्त्र वगैरह लिखे गए, तो वो मनन चिंतन मंथन करने वाले जिनको मन था वो मन चंचल हुआ या स्थिर हुआ? क्या कहेंगे? चंचल मन कहेंगे। चंचल मन वाले को ही मनुष्य कहा जाता है, और वो मनुष्य जिनको मन होता है, चंचल मन, मन कंट्रोल में नहीं होता है, वो विकारी या निर्विकारी? मन कंट्रोल से बाहर है, बुद्धि के बस में नहीं है, तो मन दुष्ट संकल्प करेगा या नहीं करेगा? करेगा। दुष्ट संकल्प करेगा तो काम खराब होगा, विकर्म, वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म, विपरीत कर्म विकर्म होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो भी लिखा पट्टी की, जो भी चित्र बनाए उनमें क्या 100% सत्य हो सकता है? है, नहीं हो सकता। इसलिए बताया कि सृष्टि का जो रचयिता है मूल रचयिता, रचयिता साकार को कहा जाता है, जिससे पहले कोई रचयिता नहीं था साकार में, वो साकार मनुष्यात्मा उन चित्रों को देख देख करके पवित्रता के आधार पर, पवित्र ब्राह्मण जीवन बचाने के आधार पर जो रचना शास्त्रों की करेगी वो सत्य बात होगी या झूठी बात होगी? है, है? देखो इस सृष्टि में सबसे पहली रचना है जिन्हें शास्त्र कहा जाता है, शासन करने का विधान, उसका नाम है वेद। क्या नाम है? वेद माने जानकारी, जानना। और वेद माने जानकारी, सार रूप में जानकारी को नाम दिया वेद। उन वेदों में मुख्य रचयिता का नाम कहीं है या नहीं? क्या नाम है? है वेद व्यास। और ब्रह्म वाक्य मुरली में हमें बाप ने बताया कि जो पहला पहला शास्त्र है वेद भी बाद में बने हैं, लेकिन वेदों से भी पहले गीता बनी है। और उस गीता का जो प्रणेता है भक्ति मार्ग में, किसको माना गया? है
भक्ति मार्ग में किसको?
है जो कागज का या भोज पत्रों पर जो गीता मिली है या जो गीता के श्लोक कविता सुनाने वाले ने, कवि ने सुनाई और सुनने वालों ने याद किया और फिर बाद में भोज पत्रों पर लिखा, तो वो गीता का प्रणेता कौन? सतयुग त्रेता में तो कोई शास्त्र थे ही नहीं। शास्त्र माने शासन करने का विधान, शास माने शासन करना। तो देवताओं को शासित करने की जरूरत है तो संविधान बनाने की जरूरत है नहीं? ये तो जब से द्वैतवादी दुनिया हुई, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, तो झगड़ा शुरू हुआ। तो अनुशासनहीन बने, जो अनुशासनहीन होते हैं वो झगड़ते हैं कि जो अनुशासन में रहने वाले होते हैं वो झगड़ते हैं? तो शास्त्र की जरूरत हुई। पहला पहला शास्त्र बना श्रीमद् भगवत गीता, नाम ही रखा गया भगवान की गाया हुआ गीत। चलो भगवान का गाया हुआ गीत, भगवान तो निराकार आत्माओं के बाप को कहें, वो ही जानी जानना आ रहे। जन्म मरण के चक्र में आने वाला तो जानी जानना हार नहीं हो सकता, और जो जानी नहार जानना हार नहीं है वो अपन को भगवान कैसे कह सकता। तो जो गीता शास्त्र है उसमें नाम किसका है? व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से हमें ये गीता मिली। आत्मा दुखी होगी तो श्रेष्ठ शास्त्र की रचना करेगी, या सुखी होगी तब करेगी। तो जब व्यास की आत्मा प्रसन्न थी, क्या सुख से भरी हुई थी, और सुख ज्ञान से आता है या अज्ञान से आता है? तो ज्ञान से भरी पूरी आत्मा थी, और ज्ञान उन्हीं आत्माओं में टिकता है जो पवित्रता को धारण करती हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्या ब्राह्मणों का काम ज्ञान लेना, ज्ञान देना? नहीं तो दुनिया में दो प्रकार के ब्राह्मण बन गए, एक कथावाचक ब्राह्मण और दूसरे धामा खाने वाले ब्राह्मण। उनका धंधा ही होता है क्या? धामा बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे, कथा नहीं करते। और दूसरे कथावाचक, वो कथावाचक एक दो बिरला होता है या अनेक होते हैं? एक कथा करता है, बाकी सब धामा खाने वाले हैं। तो द्वापर के आदि में सात्विक स्टेज में जो ब्राह्मणों के बीच में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, जिसका कर्म था बैठने का, कोई खास काम के लिए जीवन में बैठ गया, बैठकर क्या किया है? शास्त्र लिखे, गीता लिखी। तो गीता में लिखा हुआ व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से ये श्रीमद् भगवत गीता मिली है। तो पवित्र ब्राह्मण होते थे, अकेले व्यास की बात नहीं है, व्यास नाम की गद्दियां चली आ रही हैं। क्या जो भी कथावाचक गद्दी पर बैठता है उस गद्दी का नाम क्या? व्यास गद्दी पड़ गया। तो जो मूल रूप में व्यास था, अब्बल नंबर का व्यास, और शास्त्र भी नंबर बार, पहले गीता, फिर वेद, फिर आरण्यक, फिर शतपथ ब्राह्मण आदि, फिर उपनिषद, ये एक दूसरे की व्याख्याओं के ऊपर व्याख्या निकलती गई, फिर पुराण, ढेर के ढेर पुराण बन गए। तो जितनी भी व्याख्याएं बनाई गई, उन व्याख्याओं में कोई मूल व्याख्याकार होगा या नहीं होगा? इसलिए उस मूल व्याख्याकार का नाम गीता में दिया हुआ है। क्या नहीं? दूसरा नाम दे दिया है? नहीं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहा जाता है। क्या गीता में बोला सांख्य और योग अलग अलग नहीं है? जो सांख्य है वो योग है। सांख्य का मतलब क्या? सह आख्या, जो बात व्याख्या के द्वारा बताई जाए। क्या किसी को थोड़ा बता दो नहीं समझ में आता तो क्या करता है व्याख्याकार? विस्तार से समझाता है, उसको कहा जाता है सांख्य। और सांख्य शास्त्र का प्रणेता कपिल मुनि माना गया, जिसके नाम पर कांपिल्य नगरी नाम पड़ा। जिस कांपिल्य नगरी में महाभारत में प्रसिद्ध पांडव जिन्होंने कांपिल्य नगर में लंबे समय तक गुप्तवास किया। क्या ऐसे तो इधर उधर भी भटकते रहे लेकिन लंबे समय तक कौन सी नगरी में रह करके गुप्तवास किया? कांपिल्य नगर में। वो कांपिल्य नगर कपिल मुनि के नाम पर बसाई गई नगरी है, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे, जिन्होंने ज्ञान की योग की हर बात को गहराई तक विस्तार से समझाया था। सिद्धि प्राप्त, योग से सिद्धियां मिलती है ना, रिद्धियां मिलती है ना, तो रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने वालों में कपिल मुनि का नाम प्रसिद्ध है। व्यास का भी नाम प्रसिद्ध है। महाभारत में भी चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो और चाहे यादवों का हेड है, हाँ हेड हो, सबके बीच में उसकी मान्यता थी। किसकी है? व्यास की। तो इससे साबित होता है कि वो व्यास, वो कपिल मुनि कोई दूसरा नहीं है, ज्ञान में ही लगा रहने वाली आत्मा है। चाहे वाल्मीकि के रूप में हो चाहे तुलसीदास के रूप में हो, और वो अकेली आत्मा है क्या है कि कोई विशेष आत्मा साथी भी है? कौन? ब्रह्मा बाबा अगर साथी होता प्रैक्टिकल जीवन में तो यादगार होती, मंदिर होते, मूर्तियां होती। न यादगार है न मूर्तियां हैं और न कोई ब्रह्मा को याद करता है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है और दाढ़ी मूछ वाला विकारी होता है या निर्विकारी देवता होता है? विकारी होता है। भले ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्य उच्चारे गए थे लेकिन उच्चारण करने वाली आत्मा दूसरी थी या दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा? दूसरी आत्मा। वही आत्मा जो महावाक्य उच्चारण करती है कि भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं, चार चार पांच पांच शादियां कर लेते हैं। करते हैं या नहीं है? ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि प्रवेश करने वाला परम पुरुष, क्या प्रवेश करने वाला परम पुरुष, और जिसमें प्रवेश किया वो माता। परम पुरुष माने पुरुषों में बड़ा था बड़ा पुरुष, और जिसमें प्रवेश किया वो बड़े थे बड़ी माता। फिर नंबरवार माताएं, इसलिए बता दिया ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है। और यादगार भी मिलती है, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा। तो जरूर पांच आत्माएं निमित्त बनी होंगी जिनमें प्रवेश करके निराकार शिव ने, परम पुरुष ने, हेवनली सुप्रीम गॉड फादर ने पांच शादियां की। पांच को माता बनाया, यही परंपरा भारत में चली आई। तो देखो बोला भी है जो ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा की चार भुजाएं हैं, चार भुजा का मतलब है चार सहयोगी आत्माएं। तो विष्णु की भी चार भुजाएं माना चार सहयोगी आत्माएं, इसलिए साक्षात्कार से बनाए गए त्रिमूर्ति के चित्र में जो विष्णु है नामधारी उसके नीचे चार नाम दिए हुए हैं। कौन है? ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती, कृष्ण के साथ राधा और राम के साथ सीता। अब भुजाएं जड़ होती हैं या स्वयं चालित होती हैं? किसी के द्वारा चलाई जाती है। तो भुजाओं को जो चलाने वाली शक्ति है वो भुजाओं के अंदर है या भुजाओं से भी ऊपर है? जो भुजाओं से ऊपर है वो टेम्पररी रथ ब्रह्मा नहीं है। टेम्पररी रथ अनेक हो सकते हैं लेकिन मुकर्रर रथधारी जो ब्रह्मा वो ही मुकर्रर रथधारी विष्णु। कौन अव्वल नंबर ब्रह्मा? परम ब्रह्म अव्वल नंबर है, तो कौन आत्मा? जो मनुष्य सृष्टि का 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है। सब जानते हैं आदि में पिता होता है, बाद में पति बनता है। शास्त्रों में अंत समय का टाइटल दिया हुआ है नाम, या आदि का टाइटल दिया हुआ है? अंत का टाइटल है प्रजापति, आदि का टाइटल प्रजापिता हमें बाप ने बताया। तो जो मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष है, आदि बीज, उस मनुष्य सृष्टि के पिता में, बीज में शिव ज्योति बिंदु जब प्रवेश करता है, तो जैसे दादा लेखराज का नाम बदलकर क्या रख दिया? ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम चला। दादा लेखराज विद्यालय नहीं नाम चला, क्या नाम चला? हैं? हाँ, ऐसे ही आदि में जिस पुरुष तन में प्रवेश किया उसका नाम क्या रखा? काम निकालने के लिए ब्रह्मा, प्रजापिता नहीं, क्या नाम रखा? ब्रह्मा। पिता तो वो खुद ही है, उसे क्या चाहिए? उसे नई सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। तो जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम माता, मां दिया, क्योंकि अव्वल नंबर माता है, इसलिए परम ब्रह्म हो गया। वो परम ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि रची जाएगी, वो टेम्परेरी माताओं के द्वारा अव्वल नंबर की सृष्टि होगी कि नंबर वार होगी? है जो परम पुरुष अव्वल नंबर की माता के द्वारा सृष्टि रचेगा, अव्वल नंबर ब्रह्मा के द्वारा वो सृष्टि जो अव्वल नंबर में रची जाती है, वो सृष्टि बाद वाली माताओं के द्वारा जो सृष्टि रची जाएगी उसके मुकाबले श्रेष्ठ और ज्यादा शक्तिशाली होगी कि कम होगी? ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए उसका नाम दिया है सूर्यवंश। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रवेश होता है असली ज्ञान सूर्य का, जो सदैव डिटैच होकर पार्ट बजाती है आत्मा, वो सुप्रीम सोल माता का भी पार्ट बजाता और पिता का भी पार्ट बजाता। यज्ञ के आदि में दोनों ही पार्ट थे, माता का भी और पिता का भी है। हाँ, तो जो आदि में सुअंत में भी, आदि में जो तन में प्रवेश किया वो पतितन था या पावनतन था, और आत्मा भी पतित आत्मा थी। फिर जो परम पुरुष ने त्रिकालदर्शिता का अखूट ज्ञान दिया, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है या अपने अंदर छुपा के रख लिया जाए, किसी को न दिया जाए तो बढ़ता है? तो वो ज्ञान बांटने में इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड के आदि में कौन आत्मा थी निमित्त, जो ज्ञान के बांटने में सबसे आगे गई, कोई थी या नहीं थी?
है?
थी तो प्रूफ दो। है? अरे प्रूफ ही नहीं मिला। अरे मुरली ब्रह्म वाक्य प्रूफ है या नहीं है? ब्रह्म वाक्य है। दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से कहलाया हुआ, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर हो बैठते थे, हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे। तो मम्मा बाबा अर्थात ओमरादे मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा से भी ज्यादा तीखी आत्माएं थी या नहीं थी, जो ज्ञान में भी तीखी थी और योग की भी ड्रिल कराती थी, योग में भी तीखी थी और पढ़ाई भी पढ़ाती थी, टीचर बनकर के बैठती थी, तो सुप्रीम टीचर के रूप में प्रैक्टिकल पार्टधारी के रूप में थी या नहीं थी? थी। और बताया कि बाप भी एक ही है, टीचर भी एक ही है, सुप्रीम टीचर, और जो बाप है बीज डालने वाला, जो गीता में लिखा है अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। किसने कहा? किसने कहा मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं? शिव बापू। निराकार आत्माओं का बाप, निराकार सुप्रीम सोल शिव निराकारी ज्ञान का वर्षा देगा या साकार वर्षा देगा स्वर्ग का? है? निराकारी ज्ञान देता है। तो जिसने निराकारी बन करके, निराकारी था और निराकारी ज्ञान दिया त्रिकालदर्शिता का, वो स्वयं कहता है कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं, तुम बच्चे नंबर वार मास्टर त्रिकालदर्शी हो। मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा करके दिखाने वाले। आत्मिक स्वरूप में समझा जा सकता है कि ये आत्मा है जो सदा निराकारी रहती है और देह धारण नहीं करती, देह में अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए एवर प्योर है। समझेगी ना? लेकिन निराकार आत्माओं के बीच में एवर प्योर कहेंगे या साकारी मनुष्य सृष्टि के साकार पार्टधारियों के बीच में एवर प्योर कहेंगे? हैं? साकार सृष्टि में वो एवर प्योर है, आत्माएं तो सदा प्योर है, आत्माओं का बाप भी सदा प्योर है। अगर आत्मा है तो देह की स्मृति नहीं है तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है साकार मनुष्य जो एवर प्योर है? प्रैक्टिकल में साकार है ना, मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है क्या गीता में, अहम बीज प्रदक पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला साकार मनुष्य सृष्टि में, साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप मैं हूं। साकार मनुष्य सृष्टि का बीज कौन बोएगा? साकार ही बोएगा। तो पिता कहेगा कि मैं पिता हूं, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। तो जो बीज बोने वाला पिता है वो तो बीज बोने वाला परिवार में अव्वल नंबर हुआ ना, है? है? क्या बोल, अव्वल नंबर हुआ। जो अव्वल नंबर है वो इस मनुष्य सृष्टि में लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। क्या? अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा। उसने क्या किया? अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला साकार है या सिर्फ निराकार है? न सिर्फ साकार है न सिर्फ निराकार है, वो साकार सो निराकार है। क्या है? वो साकार पुरुषार्थ करके सो निराकार बनता है, और जब साकार निराकार बन जाता है कॉम्बिनेशन, तो उसको कहा जाता है कि ये दुनिया पुरुष रूपी आत्मा और प्रकृति प्रकष्ट रूपी रचना पहली माता। परिवार की पहली रचना कौन? माता। वो दोनों है, इसलिए शिवलिंग के सामने जाते हैं शिवालय में तो हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम्हारे साथ मेरे सर्व संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि वो संबंधों की दुनिया में, ये साकार दुनिया संबंधों की दुनिया है ना, उनमें अव्वल नंबर का संबंधी क्या है? पिता है। पिता का काम है पहले पहले बीज बोना। उस पिता ने बीज बोया तो किस में बीज बोया? है जगदम्बा में बीज बोया, बहुत प्रभाव पड़ गया है। अरे जगदम्बा में बीज बोया वो ज्ञान का बीज बोया या भक्ति का बीज बोया? है? और भगवान किस लिए आता है? वो तो ज्ञान का बीज बोने के लिए आता है ना। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ वो ही कहता है तुलसी कृत रामायण हिंदी में लिखी गई है, हिंदी में बोलता है, यही जानो तेही देव जनाई। उसको तुम जानकारी दे देते हो, काय की उसकी भी जानकारी दे देते हो, कि तू है, क्या है, तीनों काल में सत्य इस संसार में। क्या जानकारी देता है कि तू इस संसार में तीनों काल में सत्य है और सत्य का मतलब ये नहीं कि तेरे अंदर सत्य का ज्ञान है सदाकाल, नहीं, तेरे अंदर सत्य का ज्ञान देने वाला मैं हूं। तू तो अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाता है, ब्राह्मण चोटी बन जाता है, चोटी में कोई जान नहीं होती है, संकल्प विकल्प नहीं होता है, पत्थर जैसा। तो मैं किसका आधार लेता हूं? परम ब्रह्म जिसका नाम दिया वो तन का आधार लेता हूं या आत्मा का आधार लेता हूं? है तन का आधार लेता हूं। अरे पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष को क्या चाहिए, कैसा चोला चाहिए, मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? जो पुरुष रूपी आत्मा कहा जाता है वो आत्मा मेल है या फीमेल है? मेल है। और वो तो ऐसा मेल है जो परम पुरुष कहा जाता है, सुप्रीम सोल। तो वो सुप्रीम सोल को क्या चाहिए नया परिवार रूपी सृष्टि रचने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम रचने के लिए? क्या चाहिए? माता चाहिए। कैसी माता चाहिए? हा? अरे शादीशुदा चाहिए, जो कोई ने पहले से ही झूठी कर रखी हो, या फ्रेश कन्या चाहिए? पर माता नहीं। क्या चाहिए? अरे हंसने की बात नहीं, कन्या चाहिए, परम पवित्र चाहिए ना। तो वो निराकार है, निराकार के अंदर निराकारी सत्व है सार, और साकार मनुष्यों के अंदर भी कोई साकार में सत्व है, जिस सत्व को जीवन में जो धारण करती है फीमेल और सच्चाई से धारण करती है। क्या? हाँ, झूठ बोलने वाली ना हो। ना ना ना, मैंने किसी का साथ नहीं किया। तो जो सच्चाई से उस सत्व को धारण करती है, जो सत्व उस पर पुरुष के पास है और उस पुरुष ने उस धारण करने वाली को चुन लिया आशिक बनकर। दुनिया में ऐसे ही तो होता है, जो भी प्राणी होते हैं वो आशिक बनते हैं मेल के रूप में और फीमेल को माशूका बनाते हैं। तो वो ही बात उन्होंने फिल्मों में बनाई दी गीत, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। सच्चाई क्या है? यही सच्चाई है ना। तो वो चुन लेता है पहले, और जिसको चुनता है वो है परम पवित्र। कैसे? कैसे परम पवित्र? नहीं, वो तो बाद की बात, पुरुषार्थ करने के बाद। अभी तो पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। वो परम ब्रह्म का पुरुषार्थ, जिसको परम ब्रह्म का टाइटल मिला, वो पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। कि एक के साथ मन बुद्धि रूपी आत्मा का संबंध जोड़ के रखे या न रखे, उसकी इच्छा। आत्मा की इच्छा होती है या शरीर की? आत्मा की इच्छा। तो उसने आत्मा को फ्री कर दिया, आत्मा को नहीं, किसका आधार लिया? तन का आधार लिया। इसलिए बोला गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन, ये तेरा जो शरीर है क्षेत्रम मित्यविधीयते, ये ज्ञान यज्ञ का क्षेत्र है, ज्ञान यज्ञ क्षेत्र कुंड है। क्षेत्र माने खेत, खेत का खेत बिगड़ा हुआ रूप है। क्षेत्र संस्कृत का संस्कृत शब्द है। ये तेरा शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र की सच्चाई को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्या? तू क्षेत्र है हे अर्जुन, तू क्षेत्र है और वो क्षेत्रज्ञ है। दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोता हूं। ज्ञान का बीज क्या बोता है? कि इस मनुष्य सृष्टि में तू ही सत्य पार्ट बजाने वाला है, बाकी सब नंबर बार झूठे हैं। सत्य सदा काल होता है या कभी होता है कभी नहीं होता है, और सत्य एक होता है या अनेक होते हैं। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। क्या? गॉड इज ट्रुथ। गॉड उसे ही कहा जाता है जो सच्चा है, और जो सच्चा है वो एक ही है, और तेरे में वो सत्य है। माना जिस तन का आधार लिया है, उस तनधारी आत्मा में आत्मा है या नहीं है? पत्थर बुद्धि का पार्ट बजाने वाली है? है। तो जो आत्मा है, उस आत्मा के जन्म जन्मांतर जो सत्य का पार्ट है, वो जानने वाला क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानकार, क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को जानने वाला मैं हूं। और वो कहता है तू सत्य है, इसलिए तेरे में, तेरे तन में मैं बीज डालता हूं। क्या? दुनिया में भी जो पिता होते हैं परिवार के, वो तन ढूंढते हैं या पार्टधारी आत्मा को महत्व देते हैं? हैं? तन की सुंदरता पर फिदा होते हैं। अंदरूनी सुंदरता हो चाहे बाह्य सुंदरता हो, गुणों की सुंदरता पर फिदा होते हैं ना। आशिक सुंदरता का आशिक है, अंदर और बाहर दोनों प्रकार की सुंदरता देखता है। तो सुंदरता क्या देखी है? सत्य। 84 जन्मों में भी जो भी पार्ट बजाया है, सत्य पार्ट बजाया है या झूठ पार्ट बजाया है? मैंने जिस सच्चाई का ज्ञान दिया है, सत्य का ज्ञान ज्ञान है या झूठ का ज्ञान ज्ञान है? है? असत्य का ही ज्ञान ज्ञान है, झूठ का ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो जो मैंने सत्य का ज्ञान दिया था 5000 वर्ष पहले, वो सत्य का ज्ञान तूने ही तीनों कालों में धारण करके रखा, और द्वैतवादी दुनिया भी भले आती है तो भी उस द्वैतवादी दुनिया में एक का ही नाम वाला किया। एक माने सत्य, सत्य का ही नाम वाला किया, झूठ से टकराया। क्या? जैसे तुलसीदास कलयुग के मध्य में जन्म लिया, उस समय भारत में प्रकांड विद्वान वो ही माने जाते थे, पब्लिक उन्हीं को श्रेष्ठ विद्वान मानती थी, साधु संत महात्मा मानती थी जो संस्कृत जानते थे। क्या? संस्कृत के विद्वान पंडित आचार्य होते थे, उन्हीं की मान्यता थी। ऐसे पंडितों के बीच, विद्वान पंडित आचार्यों के बीच उनका विरोध करके संस्कृत में पुराण न लिखे, हिंदी में लिखे, जो हिंदी उस समय प्रचलित भाषा थी, प्रजा की भाषा थी। तो बताओ विरोध होगा या नहीं होगा? भयंकर विरोध के बीच में उन्होंने रामायण हिंदी में लिखी और बता दिया, तुलसी गरीब निबाज की कोई न पूछे बात। क्या? उनकी कोई मान्यता नहीं थी संसार में, जब इतना श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा जो नॉर्थ इंडिया में आज सबसे जास्ती मान्यता है। कौन से ग्रंथ की? तुलसी कृत रामायण। तो देखो वो ही आत्मा संगम युग में भी पार्ट बजाती है, सत्य का पार्ट बजाएगी तो झूठों से टकराहट होगी या नहीं होगी? ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, सच्चाई है। ब्राह्मणों की ओम मंडली नाम की सृष्टि रची, क्या हस्र हुआ है? सारी दुनिया एक तरफ और वो एक आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, सारे ब्राह्मण भी दूसरी तरफ और वो आत्मा एक तरफ हो गई। दुनिया में धर्म पिताओं को देखो, धर्म पिताओं ने आकर जब अपने अपने धर्म की धारणाएं सुनाई तो उनको धर्म के धक्के खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? इब्राहिम ने आकर अपनी धर्म की धारणाएं सुनाई तो भारतवासियों ने उनको और उनके फॉलोअर्स को पश्चिम की तरफ खदेड़ दिया और कभी आने नहीं दिया। अगर आए भी तो लूटपाट भी की, अत्याचार किए, लेकिन फिर क्या हुआ? है स्थिर रहे या भाग खड़े हुए? भाग खड़े हुए।
तो डटने नहीं दिया, स्थिर नहीं रहने दिया, नहीं तो कोई अपनी बात कहता है तो कहने देना चाहिए। सुनने वालों का ये धर्म है कि सत्य बात कहता है तो सुनो, धारण करो। झूठी बात कहता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, दौड़ के।
अरे हमको भी बाप ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया? किसी का मुंह बंद करना है? नहीं, बोलने दो। ये बाप ने जो सिखाया, सत्य कर्म करना सिखाया या ये झूठा कर्म है? है सत्य कर्म है कि कोई अगर झूठ बोलता है, ग्लानी करता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ऐसे समझ लो जैसे रामायण में बोला है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। सुनने का मतलब है सुना और धारण कर लिया, तो सुना, सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, धारण नहीं किया तो सुना नहीं, सुना सुनी अनसुनी कर दो। क्योंकि होय पाप गौ घात समाना, जैसे गाय की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया। हम तो जानते हैं कि एनिमल गऊओं की तो बात ही नहीं है, ये तो भारत की कन्याओं माताओं रूपी ह्यूमन गऊओं की बात है। जब भगवान आते हैं तो जिन ह्यूमन गऊओं की पालना करते हैं उन ह्यूमन गइयों को कोई काटता है। क्या? कैसे काटता है? नहीं, काम कटारी चलाता है। काटता है माना काम कटारी चलाता है। वो गऊओं का दिल और दिमाग बाप को अर्पण हो चुका और वो क्या करते हैं? वो दुर्योधन दुशासन बन के जबरियन काट देते हैं। तो कौन से धर्म के हुए? वो भगवान भगवान को किसी को नहीं मानते, समझ लो पक्का है। नहीं, नास्तिक भी नहीं कहेंगे, उनका नाम है मुसलमान। किसको मानते हैं? है मुसल को ही मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। ज्ञान में चलने का ढकोसला करने वाले ब्राह्मण वो नीची कुरी के ब्राह्मण है या ऊंची कुरी के ब्राह्मण है? कैसे ब्राह्मण है? नीची कुरी में जाकर के द्वापर युग में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहां प्रैक्टिकल में मुसलमान बनेंगे, क्योंकि यहां शूटिंग करके बैठे हैं। जैसी रिहर्सल करेंगे वैसा ब्रॉड ड्रामा में पार्ट भी बजाना पड़ेगा। ये हो सकता है कोई थोड़े समय का पार्ट बजाएं और कोई लगातार का पार्ट बजाएं, जन्म जन्मांतर का 63 जन्मों में पार्ट बजाएं। तो ऐसे भी है जो बीज रूप आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, कोई बीजों पर मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, कोई बीजों में पतला छिलका चढ़ा हुआ है, कोमल छिलका चढ़ा हुआ है, कोई बीजों में मोटा और कड़क छिलका चढ़ा हुआ है। तो ज्यादा डंडे किसको खाने पड़ेंगे? ये धर्मराज के डंडे जितने ज्यादा खाएंगे उतना ही नीचे धर्मों में जाएंगे। धर्म खंडों में जाएंगे, भले कोई कम समय के लिए जाएंगे, कोई ज्यादा समय के लिए जाएंगे। जिन्होंने इस ज्ञान के राज को पहले जान लिया, क्या गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है ना, इन राजों को समझ करके राजा बनाने वाला ज्ञान है ना, राजयोगियों का ज्ञान है ना। सच रूपी रंगमंच पर परमपिता के घर से बाद में पार्ट बजाने वाले आत्माएं बच्चा बुद्धि है या नहीं? रंगमंच पर बाद में आकर के आंखें खोलते हैं तो द्वापर के बाद में आने वाले आत्माएं बच्चा बुद्धि हैं या नहीं है? हैं? बच्चा बुद्धि। और जो सृष्टि के आदि सतयुग में आ गए वो सालिम बुद्धि हैं, बड़े बच्चे हैं। और सतयुग के आदि में जन्म लेने वाले जो आत्माएं हैं पहली पीढ़ी के, उनको भी जन्म देने वाले वो बाप समान असली ज्ञान सूर्य के समान बच्चे हैं, एकदम सालिम बुद्धि है या बच्चा बुद्धि है? हैं? सालिम बुद्धि है। जिस समय उन्होंने उस बाप को पहचाना, उन मनुष्य आत्माओं ने, और पक्का पक्का पहचान करके पक्का कर लिया कि हम बाप के बच्चे हैं, आत्मा रुद्रमाला के मण के, आपस में हमारा क्या संबंध है, भाई भाई, भाई बहन का भी संबंध नहीं। क्योंकि आज की दुनिया का वातावरण ऐसा है, अगर भाई बहन भी समझते हैं तो भी क्या गड़बड़ हो जाता है? अरे ब्रह्म वाक्य मुरली में कुछ बताया कि नहीं बताया? सब भूल जाते। क्या बताया? भाई बहन को नहीं छोड़ता, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, सारे संबंध दूषित हुए पड़े। और बाप कहते हैं तुम बच्चे भाई भाई हो, तुम्हारा कोई दूसरा संबंध नहीं है, तुम आपस में छोटे बड़े भाई भाई, और बाप तुम्हारा बाप, एक बाप और बाकी सब बच्चे भाई भाई। तो इस ज्ञान की गहराई को 100% जिन्होंने नहीं माना, ज्ञान में आने के बाद संसार के सामने ढोल पीटने के बाद कि हमें भगवान मिला है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हमारा बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर बनकर हमको पढ़ा रहा है, ढोल पीटा या नहीं पीटा? पीटा। और वो ढोल पीटने वाले ही ऐसा काम करें, बाप के परिवार को दूषित करें, दूषण का प्रदूषण का वातावरण बनाए। बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए, स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए, जिस स्वर्ग में हर देवात्मा आत्मिक स्थिति की पक्की होगी या झूठी होगी? पक्की होगी, कोई भी कच्ची नहीं होगी। ऐसी दुनिया में जाने योग्य बनना है तो क्या भाव पक्का करना है? हम सब ज्ञान में चलने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ऐसा कोई दुष्कर्म न हो जाए जो बाप को हमारे ऊपर धर्मराज बनकर के लानत डालनी पड़े। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर जो तुम परिवार में ऐसा प्रदूषण फैलाते हो। तो बताया कि वो एक बाप है मनुष्य सृष्टि में साकार, जो मनुष्य सृष्टि का ऐसा साकार परिवार बनाता है जहां वो बाप बनकर प्रैक्टिकल में ज्ञान का बीज बोता है। कैसा बीज? ऐसा ज्ञान का बीज ऐसी माता में बोता है जो माताओं में सर्वोपरि पार्टधारी है। प्रैक्टिकल में क्या, कौन से नंबर का ब्रह्मा होगा? है अब्बल नंबर का ब्रह्मा। अरे अब्बल नंबर का ब्रह्मा पुरुष तनधारी है या स्त्री चोले में है? है पुरुष चोले में है। तो पुरुष चोले में है, और जो पुरुष चोले में है उसमें जो समझ वाले बच्चे हैं वो जान गए कि उस पुरुष चोले में पांच तत्वों का जो संघात सार रूप में पुतला है वो प्रकृति का सार है, परा प्रकृति का सार है, बीज है, तन या आत्मा। तन पांच तत्वों का सार रूप पुतला, ऐसा सार ऐसा बीज जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, और उसे सार रूप पंच तत्व के सार रूप पुतले में वो निराकार आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करके शिव समान बन गई। क्या बन गई? शिव समान त्रिकालदर्शी बन जाती है। तब उसकी पूजा होती है देश देशांतर में, गांव गांव शहर शहर में, शिवलिंग के रूप में। वास्तव में वो लिंग रूप बड़ा भी है और वो सूक्ष्म रूप भी है, आत्मा भी है। कैसी आत्मा? बाप समान। बाप नहीं है लेकिन बाप समान तो जरूर है। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी जरूर है। थी नहीं, पहले थी, पहले तो पुरुषार्थी थी, अभी बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन गई। तो जो निर्विकारी आत्मा बन चुकी उस निर्विकारी आत्मा को जैसे शिव की आत्मा इस रंगमंच पर आती है, पतित दुनिया में आती है, पतित वाइब्रेशन में आती है, पतित विकारी तन में आती है, परंतु निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रहती है, संग का रंग लगता है नहीं लगता, ऐसे ही वो शिवलिंग स्वरूप है, उसको साकार होते हुए भी साकार में जो मनुष्य हैं और जो ब्राह्मण बन चुके, उन ब्राह्मणों के संग के रंग में आने पर भी उसको संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए जब तक संग का रंग ले रहा है और संग के रंग से जो संग के रंग में आने वाले हैं वो अपनी अपनी भावना के अनुसार सुधर रहे हैं, और भावना नहीं भी है तो भी सुधर रहे हैं, तो वो समय बीज बोने वाले बाप का स्वरूप है, वो रिहर्सल कर रहा है। निर्विकारी बीज डालने का, विकारी बीज होता है मनुष्यों का वीर्य, जिसे ब्रह्म वाक्य में मुरली में बताया है मूत, यूरिन। दुनिया में जो खेती हो रही है आज, खास भारतवर्ष में कौन सी खेती हो रही है, क्या डालते हैं धरणी रूपी माता में है? वो धरणी रूपी माता लगातार कैसी होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, विकारी बनती जा रही है, विशेष बनती जा रही है। ऐसी विशेष जो भी फसल की पैदाइश होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा कीड़े पड़ते जाते हैं, और इतनी आदि हो गई चैतन्य धरणी भी और जड़ धरणी भी, इतनी आदि हो गई कि उसमें यूरिया डालो यूरिन डालो तो बहुत प्यार से ज्यादा फसल देगी, अच्छी फसल देगी, और नहीं डालो तो फसल ही नहीं देती। इसलिए अगली बार मजबूरन और ज्यादा यूरिया डालनी पड़ती। तो ऐसे चक्कर में दुनिया फंसी हुई है। क्या ये यूरिया यूरिन रूपी विष और जो कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं वो भी केमिकल वाली, इस विष को पीते पीते हर मनुष्य आत्मा ऐसी स्टेज भी आ जाएगी कि बंदर बंदरियों मिसल हो जाएंगे। क्या कैसे हो जाएंगे? गोप गोपी के संबंध में रहेंगे, पार्ट बजाएंगे, संबंध जोड़ेंगे, बंदर क्या करते हैं? ऐसे विकारी भयंकर होते हैं कि पेड़ की टुंगस पर जाकर के विकार भोगेंगे, कोई लिहाज शर्म नहीं, न फीमेल को और न मेल को, बिल्डिंग के कंगूरे पर बैठकर के विकार भोगेंगे। ऐसी हालत इस दुनिया की होने वाली है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों? अन्न नहीं, जैसा संग वैसा रंग। विविचारी संग होता जाता है, विष बढ़ता जाता है, विष खाएंगे तो विषैले ही बनेंगे, विष पिएंगे तो विषैले बनेंगे, और विष किसे कहा जाता है वो भी क्लियर कर दिया। पराई स्त्री या पर पुरुष का सुख भोग करना इंद्रियों का, इसे क्या कहते हैं? विष कहते हैं। ये जो संसार में विष बढ़ रहा है, इस विष को कोई भी पीने की ताकत नहीं रखता। एक ही है जिसने सारे संसार के विष को पी लिया, और विषपाई बनेगा तो काम विकार और ज्यादा तंग करेगा या नहीं करेगा? ये तो ऐसा विकार है जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि जितनी इसमें आहुति डालोगे घी की उतना जास्ती बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो एक ही शख्सियत शास्त्रों में दिखाई है कि काम विकार भोगने वालों में जो बड़े से बड़ा कामी है, उस देवता का नाम क्या रखा? कामदेव। वो कामदेव जब आक्रमण करता है, जोर शोर से बाण चलाता है, तो तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव भस्म हो जाता है। और ब्रह्म वाक्य में शिव बाप कहते हैं कि ये जो कामदेव है, वो योगियों के द्वारा योगाग्नि इतनी तीव्र हो कि वो भस्म हो जाए। क्या भस्म होना अच्छा माना जाता है भारत में, या जमीन दोष करना अच्छा माना जाता है? भस्म होना अच्छा माना जाता है। इसलिए व्यक्तवाणी में चैलेंज दिया, अब देखेंगे लाखों में से एक, करोड़ों में से एक कौन निकलते हैं, कितने निकलते हैं, और कौन अपने को भस्म बनाते हैं, देवान को भस्म बना देते हैं जलाए करके। इसलिए यादगार में एक शख्सियत दिखाते हैं, महादेव क्या रमाता है? है भस्म रमाते हैं। वो तो भक्तों ने या चित्रकारों ने या कवियों की कविता ने समझाने के लिए दिखाया है कि आत्मा में देवान कैसे भस्म होता है, काम विकार कैसे भस्म किया जा सकता है। निरंतर याद करेंगे तो काम विकार भस्म होगा, नहीं तो भस्म नहीं होगा। इसलिए बोला कि तुम बच्चों को खुशी में आना चाहिए, याद में खुश रहना चाहिए। अगर याद में रहते रहते चेहरे पर खुशी नहीं आई, चेहरा भारी हो जाता है, आंखें याद लगाते लगाते चंचल हो जाती हैं। कोई इधर से आया, बाबा से योग लगा रहे, योगी की निशानी बताई। योगी की आंख स्थिर हो जाएगी, क्या निशानी बताई? दृष्टि स्थिर हो जाएगी। नहीं तो हम बच्चों से शिकायत करते हैं, शिव बाप, कि अभी भी बच्चे दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें रोज ही करते हैं। तो प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? है योगी की प्रैक्टिस बढ़ रही है या भोगी की प्रैक्टिस बढ़ रही है? क्या हो रहा है, योगी बन रहे हैं या भोगी बन रहे हैं? है धीरे से बोल रहे, और वो भी एक ही बोल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। क्यों बन रहे हैं? 80 साल हो गए, कारण क्या है जो भोगी बन रहे हैं? संघ कारण, आप सत्संग नहीं करते हैं, झूठों का संग करते हैं। जो गुरुओं ने झूठी बातें सुनाकर शिवो हम ब्रह्मास्मि आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसी झूठी बातें सुनाकर उन झूठों का संग कर रहे हैं या एक सत्य का संग कर रहे हैं? है? एक का कर रहे हैं। अगर एक का संग कर रहे हैं तो रंग कैसा लगेगा? सत्य का ही संग रहे। उस एक को पहचाना, जिस एक सत्य बाप के लिए बोला कि बाप की पहचान बाप ही दे सकता है। क्या बाप के सिवाय बाप की पहचान कोई दे ही नहीं सकता? वो सत्य बाप, लेकिन छोरी मात्र। क्या वो जिसमें प्रवेश करता है उसको वरदान देता है? क्या है? तो मास्टर त्रिकालदर्शी, तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी है, उस मास्टर त्रिकालदर्शी को 80 साल में शुरुआत में तो पहचाना ही नहीं ओम मंडली में, और दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उसमें भी टू लेट का बोर्ड लग गया। एक ही युगल पास हुआ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाला। अभी तीसरा ब्राह्मणों का संगठन चल रहा है, दुनिया चल रही है, और इस 80 साल हो गए अब तक हम कहते चले आ रहे हैं। क्या है? हम भोगी बने हैं, भोगी बनते जा रहे हैं या योगी बने हैं? क्या बने हैं? तो बताया, पहचान है, याद में जब बैठे हैं तो चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। ये वीडियो में कैसा आना चाहिए? खुशनुमा चेहरा आना चाहिए, भारीपन महसूस न हो। दृष्टि है एकाग्र, स्थिरियम होनी चाहिए, नहीं तो खुशनुमा चेहरा नहीं होगा तो बाण नहीं लगता है। ये बातें बिल्कुल समझने की बातें हैं, कोई ना समझ रहा हो तो बोल सकता है, है? और आएंगे, बहुत आएंगे समझने के लिए, ये सब आएंगे, आखिरी में आएंगे जिनको जिनको आपने समझाया है। राजाएं भी आएंगे, साधु संत भी आएंगे, आवाज निकलेगा किसके द्वारा, कोई बड़ा होगा उसके द्वारा आवाज निकलेगा, छोटों का आवाज इतना नहीं जाएगा।
बाबा तो सबसे बड़ा कौन है,
तो सोचो ना कौन है बड़ा, बाबा से ही पूछ रहे।
सबसे बड़ा,
सबसे बड़ा ये स्वेटर और पेंट पहने बैठा हुआ है, ये सबसे बड़ा है। विदेशी सभ्यता को, विदेशी वेशभूषा को फॉलो करने वाला कौन है सबसे बड़ा आज की दुनिया में, है? अरे आज की दुनिया में कोट पैंट टाई लगा के, टोप लगा करके विदेशों में घूमते हैं, ढेर सारा पैसा कमा के आते हैं, बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, फिर हद की दृष्टि और बेहद की दृष्टि की बात है। छोटों का आवाज दुनिया में नहीं जाएगा, और अंतिम संदेश में ब्रह्म वाक्य, ब्रह्मा ने दादी गुलजारी को द्वारा बोल दिया, सिर्फ आवाज जानी चाहिए दुनिया में, सिर्फ आवाज जानी चाहिए, रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है। इसके सामने दुनिया वालों के सामने जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, जो बाप की सुनाई हुई बातों के बरखिलाफ बातें सुनाते हैं, उनके सामने रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है। ये तीसरा रथ है, उस रथ के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, जिसमें सर्वात्माओं का बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश है, उसकी आवाज जानी चाहिए, उसका रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसे मत समझो कि अभी प्रत्यक्षता में 20 साल पड़े हैं, क्या कहा, 20 साल तो है ही नहीं, और 10 साल हैं, ये समझ के बैठेंगे तो 10 साल के बाद पुरुषार्थ कर लेंगे। ऐसी खुशनुमा स्टेज, खुशनुमा चेहरा बनाए लेंगे तो नंबर कौन सा बनेगा, हैं? कौन सी माला में, तो प्रजायोग सीखने आए हैं या राजयोग सीखने आए हैं, फिर ओम शांति।